نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دار قرآن 2020 پارا نمبر 13. اللہ تعالیٰ کا کلام حقیقت ہے کہ ہم آپ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے, ہم جتنی بھی کوشش کرتے ہیں ہم پورے نہیں آتے. ہر دن پارے کو پڑھنے اور بڑھانے کے بعد میں یہی سوچتی ہوں کہ آج پھر حق ادا نہیں ہوا. پھر دل میں خیال آتا ہے کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ اور بھی موقع دے گا اور اس کو حاصل کریں گے. تو ہم نے سورۃ یوسف شروع کی ہوئی ہے. پارے کا آغاز آیت نمبر 53 سورۃ یوسف سے ہے, اور اس پارے میں ہم نہ صرف یہ کہ سورۃ یوسف کو پورا کریں گے بلکہ خوبصورت سورۃ الروت اور پھر سورۃ ابراہیم اور چند آیتیں سورۃ ہجر کی بھی دیکھیں گے. آپ کو ایک وقت آتا ہے کہ ہر سورۃ اپنے بچوں کی طرح, اپنے فیملی ممبرس کی طرح پیاری بھی لگتی ہے اور سمجھ میں بھی آنے لگتی ہے. شرط ایک ہے کہ آپ اس کو پوری توجہ اور محبت سے سنیں. تو آئیے دیکھتے ہیں. پارے کا نام ہے وما ابریو, اور نہیں میں بے گناہ سمجھتا. ابری کا لفظ برات ان سے ہے جو سورۃ توبہ کا پہلا ہی لفظ تھا, اور ہمارے ہاں شب برات کے طور پہ بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو بیزار ہونا مطلب یہ کہ میں اپنے آپ کو بہت پاک نہیں سمجھتا. یہ کیوں ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس پارے کا تھیم اس سورت کے ناطے سے اور خاص طور پہ پورے پارے میں جو چیزیں ہم دیکھیں گے وہ ہے نفس کے فتنے. پہلا ہی لفظ وما ابریو نفسی ان النفس لامارۃن بالسوء, اور میں اپنے نفس کو بے گناہ نہیں قرار دیتا کیونکہ نفس تو برائی کی دعوت دیتا ہی ہے. یہ وہ جملہ تھا کہ جو یا تو یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے یا عزیز مصر کی بیوی کی طرف. وہ تو ایک الگ چیز ہے, لیکن اس وقت آپ نے میں نے اس کو پورے قرآن پاک کی طرف دیکھنا ہے. ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی ابتدائی کہانی دیکھ چکے, سن چکے, ذرا سا اس کو دہرائیں گے تاکہ ہم پھر اس مقام کو سمجھ سکیں جہاں ہم کھڑے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کی زندگی جو ابھی تک گزری اس کو ایک نظر میں دیکھتے ہیں. یوسف علیہ السلام کا بچپن, بھائیوں کی نفسانی برائیوں کا شکار ہوا, یعنی حسد کیا بھائیوں نے. تھوڑے سے بڑے ہوئے تو جوانی کی دہلیز پہ کھڑے تھے کہ عزیز مصر کے گھر میں بھیج دیے گئے, اور وہاں اس کی بیوی کی لسٹ کا شکار ہوئے, وہ بھی نفسانی برائی تھی. تھوڑے سے پختہ عمر کے ہوئے تو بیگماتے مصر کی دل پھیک اداؤں سے بچتے ہوئے خود کو جیل میں ڈال دیا. دیکھا جائے تو یوسف علیہ السلام کی زندگی کے بہت سارے ادوار ہیں. باپ کی محبت, جو باپ بھی نہیں بلکہ نبی بھی تھے, وہاں سے نکالے گئے اور کنویں کی گہرائیوں میں ڈالے گئے. کنویں سے نکالے گئے تو پھر محبتوں کے نام پر آزمائے گئے عزیز مصر کے گھر میں, اور وہاں سے نکلے تو جیل میں چلے گئے. لیکن اب ہر جگہ دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام نفس مطمئنہ کی مثال بنے. کنویں سے نکلے پھر جیل میں چلے گئے, لیکن انہوں نے کہیں نفس امارہ کو غالب نہیں آنے دیا. حقیقت یہ کہ جس انسان سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا کوئی بڑا کام لینا ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں اسی طرح کے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمتیں سکھانے کے لیے اور رشد کے راستے پہ چلانے کے فیصلے ہوتے ہیں. ان سارے وقتوں میں بہت خطرہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس کی شرارتوں کا شکار ہو, مایوس ہو جائے, میرے ہی ساتھ کیوں. ایک بار کسی کے ساتھ کچھ ہو جائے لوگ مائنڈ نہیں کرتے, لیکن ایک سے دوسری بار کوئی بات آ جائے تو لوگ خود ہی پریشان ہونے لگتے ہیں کہ کیا وجہ. اچھا پھر اس کے تو نصیب میں کیوں اچھا نہیں. مثلا دیکھیے, کسی بچی کی شادی کی جائے, ہو سکتا ہے کہ نہ بنے, ناممکن نہیں ہے کوئی بھی چیز, لیکن لوگ برداشت کر لیتے ہیں اور آج کل تو یہ کامن سی چیز بنی. لیکن دوسری بار بھی وہی بات ہو تو اکثر لوگ یہ فتوے دینے لگ جاتے ہیں کہ اس کے نصیب میں تو کوئی خوشی نہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جب نفس کو محفوظ کیا ہو نفس کی شرارتوں سے, تو پھر یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھیے اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں. کہاں یوسف علیہ السلام اتنے قیمتی, اتنا خوبصورت خواب دیکھا ہوا, اور کہاں چند ٹکوں میں بکتے ہوئے دکھے گئے. اور حضرت یوسف علیہ السلام ہر جگہ نفس مطمئنہ ثابت ہوئے, انہوں نے کہیں بھی اپنے نفس امارہ کو غالب نہیں آنے دیا. نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بھرے دربار میں بے گناہی ثابت کر دی, جو کہ ہم نے پچھلے پارے کے بالکل آخر میں دیکھا. تو کیا پتہ چلا کہ حالات کے اتار چڑھاؤ میں انہیں حکمت اور رشد کے موتی عطا کیے گئے. لوگوں کے بچے اغوا ہونے کے بعد جب مل بھی جائیں, یا چور بنے ہوں گے یا ڈاکو بنے ہوں گے, لیکن یوسف علیہ السلام جب اپنے باپ اور بھائیوں کے سامنے آئے, جیل کی سلاحوں کے باہر ایک روشن مستقبل ان کا منتظر تھا، اور جب اپنے باپ کے سامنے آئے تو وہ ایک نبی بھی، اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک ملک کے بہت بڑے وزیر خزانہ بھی بن چکے ہیں. تو زندگی میں ایک اصول یاد رکھیے، سب کو سنتے ہوئے رضیت باللہ ربن، آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہو کر دیکھیے یوسف علیہ السلام کی طرح. وہ تو جیل کی سلاحوں کے باہر ایک روشن مستقبل سے ملاقات کر رہے تھے. آپ کے ساتھ اس سے کچھ کم معاملہ نہیں ہوگا، شرط ایک ہے کہ لا شک و تفیقہ، صبر جمیل، زبان پہ شکر ہو، دل کے اندر اطمینان ہو، رضا بالقلیل کی کیفیت ہو. اور ساتھ ہی دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے کردار میں لالچ نہیں تھا. بادشاہ کے خواب سے پتہ چل رہا ہے کہ اس ملک پر اب بہت بڑی مالی مشکل آنے والی ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے کام کر دیتا ہوں. اور یہاں یہ بھی دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کن مشکلات سے گزر کر یہاں آئے. تو رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے، صبح کے بعد رات ضرور آتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کا وہ دور جو انہوں نے عزیز مصر کے گھر میں گزارا، تھوڑا سا اس پہ بھی چند جملے لے لیجئے تاکہ پھر ہم آگے چلیں. آپ دیکھیے کہ اگر یوسف علیہ السلام ایک دم وزیر خزانہ بنانے جانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے تو کوئی ان کو محل کے قریب بھی نہ پھٹکنے دیتا. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصہ عزیز مصر کے گھر میں رکھا، جو اپنے وقت کا وزیر خزانہ معروف ہے. تو وہاں آپ کی تربیت ہوئی، آپ کو شاہی آداب سکھائے گئے. صحراؤں میں پلنے والا ایک بچہ ہائر ایجوکیشن کے لیے مصر جیسی اس وقت کی سپر پاور میں بھیج دیا گیا. تو بعض دفعہ زندگی میں ایسے حالات ضرور آتے ہیں اگر آپ اس پہ رہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب اس عورت کے گھر میں تھے اور اس عورت نے آپ کے اوپر اپنا دل پھینکا، اور آپ کے دل میں یہ خوف تھا کہ اسبوئی لئی ہے، میں ان کی طرف جھک نہ جاؤں، کیونکہ مرد عورت کی طرف کشش محسوس کرتا ہے اور عورت کی فطرت میں سنگھار ہے. اب دونوں کی خواہشات کو پورا کیسے کیا جائے؟ یعنی مرد عورت کو دیکھے گا تو کشش محسوس کرے گا، یہ مرد کی مجبوری ہے. عورت بناؤ سنگھار کرے گی، یہ عورت کی مجبوری ہے. آج اگر آپ دیکھیں تو دونوں کی خواہشات کو پورا کرنے میں حد حجاب اور نقاب کی ہے، مم وراء الحجاب. اگر آپ کہتے ہیں کہ حجاب نہ ہو، عورت سیدھی سادھی رہے، کوئی میک اپ نہیں، کوئی اچھے کپڑے نہیں، تو یہ عورت پہ ظلم ہے. اور ساری دل پھینکتی ہوئی بجلیاں برساتی ہوئی پریاں اور ہورے بن کر عورتیں محفلوں کی شان ہو اور کہو کہ خبردار کسی مرد نے دیکھنا نہیں، نیک سے نیک مرد کے بھی دل میں عورت کے لیے خیال آ سکتا ہے. اگر ایک عورت حجاب کر لے تو کئی عورتوں کے گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں گے. تو جتنا اسلام کو آپ نافذ کریں گے، آپ محسوس کریں گے کہ اتنی ہی چیز آپ کے میرے بچوں کے لیے بہترین سی ہوگی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایز اے فادر، یہ نقطہ بھی بہت اہم ہے، جو اب اس بارے میں بھی آپ کو مجھے دکھے گا، اور یہ خاص طور پہ باپ اور بیٹے کے رشتے کے لیے. حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے مگر عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ کبھی بھی بھائیوں کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو نہ بھیجتے. اور بیٹے کے خواب سے ہی سمجھ چکے تھے کہ اب بیٹے کو بھی نبوت ملے گی، جب چاہے ملے. پھر آپ دیکھیے کہ جب بچے روتے ہوئے آئے اور رات کے وقت میں آئے، تو اس وقت یعقوب علیہ السلام سب سمجھ گئے، کیونکہ قمیض تو پھٹی نہیں اور خون لگ گیا. کتنا مہذب بھیڑیا تھا کہ جو قمیض اتار کر پھر اس کو خون لگاتا ہے. تو جذباتی نہیں ہوئے، بس میں جذبات میں آتی ہیں. روتا ہوا بچہ آیا، ہو سکتا ہے یہ خود ہی مار کے کسی کو آیا اور اس نے بھی لگا دیا، اب یہ اس کے رونے پہ دوسرے کو مارنے لگتی ہیں. تو پیرنٹنگ میں جذباتیت نہیں ہونی چاہیے، پوری طرح تیار رہیے کہ آپ کے بچے سے بڑی غلطی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ باہر گندگی بہت ہے. تو اپنے آپ کو مضبوط رکھیے. اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ تعلق توڑیں گے، ان پہ بے جا سختیاں کریں گے، تو وہ ہمیں چھوڑ چلے جائیں گے، کیونکہ ہم نے خود ہی تو ان کو ایسے جنگل میں چھوڑ دیا کہ جدھر چاروں طرف بھیڑیے ہیں. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام کا صبر جمیل تھا. صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ تین چیزیں ہیں اس میں: اعضاء پر قابو ہو، زبان پر شکوہ نہ ہو، اور دل میں مایوسی نہ ہو. اور خاص طور پہ وہ انما الصبر عند صدمۃ الاولی، صدمے کے آغاز میں جو کیا جائے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جب بیٹوں نے بات بنائی، تو جو ہمارے ہاں ایک کلچرلی بات مشہور ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں، یعنی خون تو لگا لیا جھوٹ مٹکا، لیکن قمیض پھاڑنا بھول گئے. اس پہ بہت پیارا اصول ہے کہ جھوٹا کوئی نہ کوئی عذر پیچھے چھوڑ ہی جاتا ہے. تو بہرحال پھر آپ دیکھیے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں پھینکا گیا، تو اس کی عمر کیا تھی؟ بیچ کی کوئی عمر تھی، نہ سمجھ ہوتی ہے نہ سمجھی ہوتی ہے. وہ بول سکتے تھے، وہ بتا سکتے تھے کہ دیکھو دیکھو میرے بھائی مجھے در پھینک گئے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب دل مطمئن ہوتا ہے تو انسان پھر شکوے اور شکایتیں نہیں کرتا، یہ ہم آگے بھی دیکھیں گے. تو तो इस तरीके की हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की स्टोरी कि जिसमें इतना क्लाइमेक्स और उसके अंदर जज्बातियत का रंग भी है, वहाँ से गुजारते गुजारते अल्लाह ताला ने अब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अज़ीज़े मिस्र के बाद अब बादशाह वक्त के पास खड़ा किया। ये सीढ़ियाँ होती हैं, लिखिएगा आपकी ज़िंदगी के मराहिल जो आपको कभी ज़ाहिर अच्छे नहीं भी लग रहे होते, ये आपकी तरक्की का जीना बनती हैं। बहुत कुछ हम आगे भी पढ़ते ही जाएंगे, लेकिन यहाँ एक बात और नोट कीजिएगा जो बहुत ही दिन से सोचे बैठी थी कि आपके साथ शेयर करूंगी, और वो है लफ्ज़ इमरातल को। देखिएगा कि यहाँ अज़ीज़ की बीवी के लिए लफ्ज़ इमरातुन आया। अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ बीवी के लिए तीन लफ्ज़ आते हैं, एक है जौजा और एक है इमरातुन और एक है साहिबा। ये वो बारीकियाँ हैं जो मैं इस वक्त वक्त की कमी के बावजूद भी आपके साथ इसलिए शेयर करती हूँ कि आपका दिल करने लगे कि अब दौरे कुरान के बाद हमने तफसील से कुरान पढ़ना है, क्योंकि ये एक वो समंदर है कि जिसमें आप गौताजन हो के तो देखिए, फिर आपको कोई किनारा नहीं मिलेगा। और अफला यतदब्बरून अल कुरान की ये सूरत है। तो कुरान पाक की एक खूबी क्या है कि इसमें एक लफ्ज़ भी ना हिकमत से खाली है। मसलन आप देखिए कि उर्दू में लफ्ज़ बीवी, इंग्लिश में वाइफ, कुरान पाक तीन अल्फाज इस्तेमाल करता है, इमरातुन, जौजा और साहिबा। फ़र्क क्या है? पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि इस पारे में भी एक लफ्ज़ आने वाला है इमरा का, और पिछले पारे में ख़ास तौर पे बात करूंगी इमरातुल अज़ीज़। पिछले पारे में यानी 12वें पारे में कम अज़ कम 2 या 3 दफ़ा ये लफ्ज़ आया, जैसे इमरात अलूत। सूरह तहरीम में आप जाकर अगर आगे देखते हैं तो वहाँ भी इमरात फ़िरौन का लफ्ज़ आता है, कभी जौज का लफ्ज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को मज़वाज़े मुतहरात तो कहते हैं, लेकिन इमरात नबी नहीं कहते। तो फ़र्क नोट कीजिएगा और आपका दिल गवाही देगा कि बल हुआ कलामुल्ला वल्लाही मा लहाज़ा कलामुल बशर। ये अरबों ने कहा था उस दौर में पूरी मुखालफत के बावजूद कि अल्लाह की कसम ये कलाम किसी बशर का नहीं हो सकता। तो इमरातन से मुराद ऐसी बीवी होती है जिससे जिस्मानी ताल्लुक भी हो मगर जहनी ताल्लुक ना हो, और अमूमन इस बीवी से बच्चे नहीं होते। इसके बरक्स जौज वो बीवी होती है जिससे जहनी और जिस्मानी दोनों ताल्लुक़ हों, यानी जहनी और जिस्मानी तौर पर हम माहंगी भी हो और फिर उससे बच्चे भी हों। ये फ़र्क आप देखिएगा पीछे जाकर, और आगे भी आएगी इंशाल्लाह वो मिसाल। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, जब उनकी बीवी का और उनके बच्चा ना होने का जिक्र आया तो क्या कहते हैं, वह अमराती आखिर, मेरी बीवी तो आखिर है। उलमाए कराम कहते हैं क्योंकि उस वक्त तक बच्चा नहीं हुआ था उस बीवी से, तो लफ्ज़ इमरा आ गया। लेकिन जो ही दोनों को बच्चे की खुशखबरी दी गई तो वहां ज़ौजहा का वसलख न ज़ौजहा हु, यानी उसकी बीवी को हमने बेहतर कर दिया। इसके बरक्स आप देखिए लफ्ज़ साहिबा उस बीवी के लिए आता है कि ना उससे जिस्मानी ताल्लुक ना रूहानी ताल्लुक। अब आप देखिए जहां भी अमूमन नेगेटिव लफ्ज़ आया, जैसे हजरत लूत की बीवी पीछे रह गई, हजरत नूह की बीवी पीछे रह गई, और यहाँ अब आप देख रहे हैं अजीज़ मिस्र की बीवी, इनके लिए इमरा का लफ्ज़ आया। कभी कभी ये अच्छा भी होता है लेकिन अमूमन ये बुरा होता है, जबकि अच्छी बीवी के लिए लफ्ज़ हमेशा जौजा आता है। अब मुझे बताइए आप कैसी बीवी हैं, आप हस्बैंड वाइफ का ताल्लुक़ कैसा है, और यहाँ इमरात अज़ीज़ की बीवी का ताल्लुक़ उससे पहले से कैसा था। तो अल्लाह ताला के इस कलाम में गौताज़न हो जाइए तो आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे काम बेहतर हो जाएंगे। ज़रूरत इस बात की है कि हम वक्त लगाएं, अब संजीदा होना सीखना है। फिर आप देखिए आदम और हव्वा का जिक्र जब हुआ, वकुल ना या आदम उसकुन अंत वज़ौजुकल जन्ना, अल्लाह के नबी के लिए कहा या अय्युहन नबी यकुल ली अज़्वाजिक, सूरत अहज़ाब में, तो वो अच्छे रंग में था। अल्लाह के नबियों का अपनी बीवियों के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा होता था। ज़करिया अलैहिस्सलाम की जब औलाद नहीं थी तो वह इमराती आखिर, और जब औलाद मिल गई वहबना लहू यहया वसलखना लहू ज़ौजहू, तो यह अहले समझ अक़ल ही से समझ सकते हैं। इसी तरह आप एक और मिसाल ले लीजिए अबू लहब के लिए क्या आता है आगे जाके सूरह लहब में, वमरातुहू हम्मालतल हतब, तो वमरा हमेशा नेगेटिव मीनिंग में आता है। अच्छा अल्लाह ताला के लिए जब लोग बीवियाँ और इस तरह की बातें पेश करते थे तो वहाँ साहिबा का लफ्ज़ है, मतलब जब भी अल्लाह ताला के लिए लफ्ज़ आया साहिबतुन का लफ्ज़ आया, क्योंकि ना जिस्मानी ना जहनी कोई ताल्लुक है नहीं। अन्न यकून लहू वलद वलम तकुल लहू साहिबा, उसका बच्चा कैसे हो सकता है, उसकी तो कोई बीवी नहीं है। इसी तरह आप देखिए मैदान हशर में बीवी से कोई जिस्मानी या जहनी किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं होगा, हर एक को अपनी पड़ी होगी। तो क्या फरमाया, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीह व उम्मीही व अबीही व साहिबतिही व बनी, क्योंकि वहाँ हर एक की फिक्रें अपनी होंगी, तो वहाँ साहिबा का लफ्ज़ आ गया। अब उर्दू की मजबूरी है لفظ امراتی ہو، زوجتی ہو، صاحبتی ہو، سب کا ترجمہ بیوی ہی کرنا پڑے گا، لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ ہر بیوی اس طرح کی بیوی نہیں بنی ہوتی، اس کو محبت وہ پیار نہیں ملا ہوتا شوہر سے، یا اس کے اپوزٹ بھی ہے، تو اللہ کے اس کلام کو چومنے کو دل کرتا ہے، یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں اس میں غور و فکر کی توفیق دے، اور آپ کے میرے لیے بھی ہے. آگے پڑھیں گے ہم جب سورت فرقان میں انشاءاللہ عباد الرحمن کی دعا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. تو وہاں من ازواجنا کہا گیا، کیونکہ زوج ہی اصل میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے جسمانی اور ذہنی تعلقات کی بہتری کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ سارے گھرانوں میں سکون اور اطمینان پیدا کر دے. لیکن عموماً ایسا آج کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ہم نفس کی شرارتوں کا شکار ہو گئے. تو آئیے ذرا آج کے اس بارے میں نفس کے جو فتنے اور خرابیاں ہیں اس کو دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس نے آج انسانیت کو فتنوں کا شکار کر دیا. پورے پارے میں آپ کو جو کچھ ملنا ہے نا، اس کے چند لفظ لکھ دیے گئے ہیں آپ کے لیے جو پورے پارے میں دیکھیں گے، کہ جب نفس کا فتنہ آتا ہے تو حق اور باطل کی کشمکش میں باطل اوپر دکھتا ہے. پھر نفس اتنی شرارتیں کرتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں صرف اپنی جان پہ لگا دیتا ہے. کرنا کیا ہے کہ نفس پہ قابو پانا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو آ و الیہ اخاہ قال انی انا اخوک کیوں کیا؟ کیونکہ آپ نے اپنے نفس کے اوپر پاؤں رکھا ہوا تھا. مشرق کیوں جا کر کھلی ہتھیلیوں سے پانی مانگتا ہے؟ کیونکہ وہ نفس کے فتنوں کا شکار ہوتا ہے. لوگ اللہ کی کائنات میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہی کی بات کیوں نہیں مانتے؟ یجادلون فی اللہ کی صورت میں، کیونکہ لوگ نفس کے شکار ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا تعارف لے لیجئے، بہت ڈیٹیلز کا وقت نہیں ہے. اس کے اوپر پوری پورے کورسز ہیں، پورے پورے لیکچرز موجود ہیں، ساتھ ہی آپ کی ہیلپ کر دیں تو انشاءاللہ آپ اپنی فرصت میں اس کو سنیے گا. آج صرف ہم دہراتے ہیں کہ انسانی نفس کیا ہے. تو دیکھیے گا، نفس کی تین کیفیات ہوتی ہیں. نفس مطمئنہ، جس کا ذکر سورت فجر میں آئے گا. نفس لوامہ، ضمیر جس کو آپ اور میں کہتے ہیں ملامت کرنے والا نفس، سورت قیامت میں اس کا تذکرہ ہوگا. اور یہاں آپ کے میرے سامنے ہے نفس امارہ. امار امر سے ہے، بہت حکم دینے والا، یعنی جس کو آپ اپنی زبان میں کہ نفس اس کے سر پہ سوار ہے، وہ اس کے سر پہ چودھری بن کے بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کے سر پہ حاکم بن کے بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کا لارڈ بن کے بیٹھا ہوا ہے، برائی کا حکم دینے والا. ان تینوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے. چونکہ یہاں نفس امارہ کا ذکر ہے تو آئیے ذرا تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں. تو نفس امارہ ظلم اور جہالت کا مجموعہ ہوتا ہے. یہ آپ کو ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا ماسٹر پیس ہے، بالکل ایسی ہے کہ جیسے آپ بڑا ٹیسٹی کھانا کھاتے ہیں. مثال دے دیتی ہوں کہ آپ کے گھر میں بریانی پکتی ہے، خوشبو بھی اچھی، ذائقہ بھی اچھا، مزے کا، لیکن جن چیزوں سے وہ بریانی بنی، مثلا اس میں لونگ ہے، کھا کے دیکھیے کڑوا ہوگا، اس میں موٹی الائچی ہے، منہ میں آ گئی تو تھوک دیں گے، زیرہ کھا سکتے ہیں آپ کو کیا بات نہیں، ادرک کھائیں گلے میں پھنسے گا نا. لیکن جب سب مل جاتے ہیں نا تو پھر بہت ٹیسٹی ہوتا ہے. بس اس وقت نفس کو بریانی کے طور پہ لے لیں. آپ اور میں کیا ہیں؟ نمبر ایک، فی احسنی تقویم، اللہ کا ماسٹر پیس ہے. ولقد کرمنا بنی آدم، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل میں، بڑی باعزت مخلوق ہے، یعنی انسان کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. یہ کئی مشینوں اور کئی کمپیوٹرز اور کئی سیٹلائٹس اور دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا گیجٹ جو آج تک آپ نے دیکھا سنا، اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کا شاہکار ہے. لیکن اس کے اندر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے فالہمہا فجورہا وتقواہا، اس میں اچھی بھی چیزیں ہیں تو بری بھی ہیں. بری ڈالی گئیں تبھی تو اچھی چیزوں کی آزمائش تھی. یہ ایسی کہ جیسے گاڑی میں ایکسیلیٹر بھی ہوتا ہے اور بریک بھی ہوتی ہے. بریک نہ ہو تو گاڑی چلتی ہی رہے گی، اور اگر بریک ہی ہو گاڑی میں، ایکسیلیٹر نہ ہو یا سٹیرنگ نہ ہو تو گاڑی ادھر ادھر گھومے گی. بالکل یاد رکھیے، نفس امارہ ظلم اور جہالت کا مجموعہ ہوتا ہے. نفس امارہ کا ہدف کیا ہے؟ لوگوں پہ ظلم کرنا اور ظالم بننا، اور اس میں شیطانی صفات ہوتی ہیں. یعنی لوگ کہتے ہیں نا کہ انسان میں شیطانی صفات بھی ہیں اور رحمانی بھی ہیں اور ملکوتی بھی ہیں. آج وہ حقہ آپ کے اوپر کھل رہا ہے. مثلا دیکھیے، فسق، انسان کی طبیعت کے اندر فسق ہے، رگڑ، فرکشن، سحر اور جادو کی طرف انسان کی توجہ جاتی ہے. پھر اسی طرح عصیان، نافرمانی، ریبیلیسنس، ڈس اوبیڈینس. پھر اسی طرح نافرمانی میں آگے بڑھنا. پھر اسی طرح اغوا، یعنی نفس چاہتا ہے کہ ہم شیطان کے ہاتھوں میں اغوا ہو جائیں. پھر اسی طرح اللہ کے راستے سے گمراہ کرنا. پھر نفس کے اندر بدعت کی طرف بڑی کشش ہوتی ہے، کہتے دیکھو کتنی اچھی چیز ہے. اور دین سے پھر جانا بھی بڑا اچھا لگتا ہے، کہ آزادی سب کو ہی اچھی لگتی ہے. اور کینہ، جو کہ اونٹ کی صفت ہے، ये है इंसान के अंदर शैतानी और कह लीजिए कि जानवरों की कुछ आदत। जिस तरह इंसान में शैतानी सिफात है ना, इसी तरह इंसान में कुछ एनिमल इंस्टिंक्ट्स भी हैं। बस तकबर है, गुरूर है, इतात ना करना, दिल की सख्ती, नाराज होना। अब जब ये सारी चीजें जमा होती है ना, तो इसका मजमुआ जो उसका नाम है नफ्से अम्मारा, इसी का जिक्र इधर है। आइए देखते हैं आयत 53 से शुरू करके कि इसमें आगे हमारे लिए क्या है। आज की थीम आयत आयत 53 है, बमा उबर्रियु नफ्सी इन नफ्स ला अम्मारा तुम बिसुई इल्ला मा रहिम रब्बी इन रब्बी गफूर रहीम। और मैं अपने आप को साफ नहीं कहता, क्योंकि नफ्स अम्मारा इंसान को बुराई सिखाता है, मगर ये कि मेरा परवरदिगार रहम करे, बेशक मेरा परवरदिगार बख्शने वाला मेहरबान है। कोशिश तो करने लगे हैं, लेकिन दुआओं के लिए तो हाथ उठाने ही पड़ेंगे। तो इस पारे की दुआ, जो खास तौर पे नफ्स की शरारतों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर खुतबे से पहले ये दुआ थी, बस अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहू, इतनी बात तो खुतबे के हैं अल्फाज। दुआ क्या मांगते थे, व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरी अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहू व मन युद्लिल फला हादिया लहू। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, हम इसी की तारीफें बयान करते हैं, हम इसी से मदद तलब करते हैं, इसी से मगफरत चाहते हैं, और हम अपनी नफ्स की शरारतों और अपने अमाल की बुराइयों से अल्लाह ताला की पनाह चाहते हैं। अल्लाह जिसे राह दिखा दे इसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, जिसे गुमराह कर दे इसे कोई राह नहीं दिखा सकता। इस दुआ को अपनी जुबान पे रखिए, अपने जवान होते हुए बच्चों को भी इसे सिखा दीजिए, क्योंकि नफ्स का घोड़ा बहुत सर तोड़ाएगा और फिर बच्चे हमारे क्या अपने हाथों में भी नहीं रहते। हदीस देख लीजिए, आज की अबू दाऊद की रिवायत है 4779। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम लोग पहलवान किसको कहते हो? लोगों ने अर्ज किया कि जिसको लोग पिछाड़ ना सकें, यानी जब दो का मुकाबला हो तो उसमें जीत जाए। आपने फरमाया, नहीं, बल्कि पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखता है। तो फितने नफ्स पर काबू पाने में ही फला है। हाइलाइट्स ऑफ दी पारा, कुछ झलकियां देखिएगा। एहसान की रविश अख्तियार करना सीखेंगे, खास तौर पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किरदार से। अल्लाह ताला के दिए हुए इल्म से ही इंसानी मामलात की हकीकत समझ आती है, ये जानेंगे। अल्लाह ताला अपनी तदाबीर से मोमिनों की मदद फरमाता है। अल्लाह ताला इल्जामात की हकीकत को खूब अच्छी तरह से जानते हैं। अपनी परेशानी और गम का शिकवा सिर्फ अल्लाह से करना सीखेंगे, अल्लाह ताला से दुआएं करना सीखेंगे, अल्लाह ताला की तरफ दावत देना सीखेंगे और लोगों को खबरदार करना सीखेंगे। अल्लाह ताला की सिफात पर गौर व फिक्र करना, उसकी रजा के लिए काम करना, ये क्या होता है इसको देखेंगे। इसी तरह अल्लाह ताला अपने अहद को पूरा करने का हुक्म देते हैं, हम भी इसको सीखेंगे कि इन छह चीजों का हुक्म है। इसी तरह हक को कबूल करने वाले अब्दी बागों में दाखिल होंगे, फरिश्ते हर दरवाजे से उनके पास आएंगे और सलामती भेजेंगे, इसको जानेंगे। अल्लाह ताला की तरफ रजू करना, उसकी तरफ बुलाना, उसके पैगाम को पहुंचाना सीखेंगे और लोगों को अंधेरों से निकाल कर रोशनी में लाना सीखेंगे, खास तौर पे सूरत इब्राहिम की इब्तदाई आयतों में। और अल्लाह ताला पर भरोसा करना सीखेंगे, अल्लाह ताला के सामने खड़े होने का खौफ रखेंगे, कलमे तैयबा को कबूल करके कलमाते खबीसा के मुकाबले में उठना सीखेंगे, इब्राहिम आयत 24-26 में। नमाज कायम करना, खुले और छुपे में खर्च करना, वालदेन और औलाद के हकूक में दुआ करना सीखेंगे और रसूलों की पैरवी करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के मुबीन होने की हकीकत को समझाया, ये सीखेंगे। अब ये सिर्फ चीजें ही देख लें कितनी है, तो है ना कि दरिया को कुएं में बंद करना। हमारी छोटी छोटी अकलें हैं, समझे हैं, उससे जब तक सब कुछ निकाल के बाहर नहीं रखेंगे, आप और मैं इस बारे का हक अदा नहीं कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बातें तो बेशुमार हैं, लेकिन जितना वक्त होगा उतना ही हम ले और दे सकेंगे, और अल्लाह ताला उसको भी लेने वाला बना दे। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मा उबर्रियु नफ्सी इन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी इन रब्बी गफूरुर रहीम। मैं अपने नफ्स की पाकीज़गी बयान नहीं करता, बेशक नफ्स तो बुराई पर ही उभारने वाला है, मगर ये कि मेरा परवरदिगार ही अपना रहम करे। इसको हाईलाइट कीजिए, सारा क्रेडिट अल्लाह ताला को दे रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये हैं मोहसिनीन। हम क्रेडिट खुद लेते हैं, ये मैंने किया, ये मेरा कमाल है, मेड बाय मी। हर पेंटिंग के नीचे पेंटर का नाम नहीं लिखा होता, कभी आपको पत्तों के नीचे भी लिखा दिखा मेड बाय अल्लाह, बादलों के अंदर से अल्लाह के नाम का कोई लोगो लिख रहा हो? नहीं होता। याद रखिए, जो अल्लाह के लिए करते हैं वो क्रेडिट भी अल्लाह ही को देते हैं। यकीनन मेरा रब पालने वाला, बड़ी बख्शिश वाला है और बहुत मेहरबानी फरमाने वाला है। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताल्लुक बिल्ला टपक टपक के पड़ा इसके अंदर, तो क्या पता चला कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बिल्कुल अब रेडी टू सर्व थे। अभी तक यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के जो उतार चढ़ाव थे लिखिए, आप स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे मुखातिब करके कहूँगी। अभी तक यूसुफ अलैहिस्सलाम स्टूडेंट थे, तालेबे इल्म थे, सीकर्स ऑफ नॉलेज थे, अब वो सर्विंग में आ रहे हैं। इंसान जब पिछले मराहिल तय कर लेता है तो अगले मरहले उसका मुंह देख रहे होते हैं। आप देखिए कि फूल की पत्तियां जब पूरी तरह खिल जाती हैं तो फिर उसके बाद उसके अंदर से पोलन्स गिरने शुरू होते हैं, तो फितरत का असूल है। अच्छे स्टूडेंट्स बन जाइए, देखिएगा अल्लाह आपके रास्ते में वो ऑफर्स लाएगा, वो आपको दीन को सर्व करने के मौके मिलेंगे जो उनको कभी नहीं मिले, जो कच्चे पक्के रह जाते अपना इल्म छोड़कर दूसरे को देने की कोशिश में। याद रखिए, कभी भी वो ईमान नहीं मिलता, कभी वो नहीं मिलता। इसीलिए इंसान को दीन का मिजाज समझ आता है जिसकी इधर जरूरत नहीं, लेकिन बाद में आप बात करें तो इस पे बहुत बात कर सकते हैं। पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख, कॉन्फ्लिक्ट आने ही नहीं चाहिए दो चीज़ों में। जब आप फितरत के साथ रहते हैं, पौधा जब जुड़ा रहता है फिर ही फल लगते हैं। आप वक्त से पहले फल को गिरा दीजिए, अब वो जहां मर्जी रखे पकेगा नहीं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अभी तक लिया, ये उनका इनटेक था, ये उनका कह लीजिए कि लेने का वक्त था, अब देने का आ रहा है। और याद रखिए, देने के लिए कोई जरूरी नहीं कुर्सी में सजा कर आप किताब भी पढ़ाएं। यूसुफ अलैहिस्सलाम अमली खिदमत करने वाले हैं, सोशल वर्क करेंगे। कैसे? बादशाह ने कहा इसे मेरे पास लाओ कि मैं इसे अपने खास कामों के लिए मुकर्रर कर लूं। फिर जब इससे बातचीत की तो कहने लगा, आप हमारे यहाँ जी इज्जत और अमानतदार हैं। ये है करेक्टर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बादशाह ने तो दूर दूर से सुना था ना यूसुफ का, तो कहा चलो इसको किसी काम पे रख लूंगा, कोई छोटा मोटा काम, कोई इनको छोटी मोटी जिम्मेदारी दे दूंगा। जब बात की तो उनकी पर्सनैलिटी ऐसे खुल के आई, कहा नहीं नहीं छोटा काम नहीं, इसको अपना करीबी ले आऊं, ये मैं चाहती हूँ अपने आप से भी, आप से भी। खास तौर पे अगर आप नूरुल कुरान के प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, लोग बोलें कि ये पढ़ के कहाँ से आए हैं, ये एक सांचे में से निकले हुए लोग हैं, इनके चेहरों पे इतना इत्मीनान क्यों है, सुकून क्यों है, ये सब एक ही तरह शरीयत के हुलिये में और उसके रंग रूप में ढले हुए क्यों हैं, इनकी बात में आजजी, इनके काम में कितना ठहराव, ये रात दिन एक करके अपने काम करते हैं, मेहनत की इनको इतनी आदत है। देखिए लोग आपको ऑफर्स देंगे, हमारे पास इतनी ऑफर्स पड़ी हैं कि ये जगह लीजिए, जाइए काम करें। कैसे लें, किसको भेजें? अफराद तैयार ना हो तो बिल्डिंग्स भी बेकार हैं। तो याद रखिए, यूसुफ के इस अमल से सीखिए कि अपने आप को चमकाइए, पॉलिश कीजिए, फिर अल्लाह ताला आपको वो कुछ देगा जिसका तसव्वुर नहीं आप कर सकते, कि फिर वाकई इंसान यही कह सकता है कि ये तो अल्लाह ही है जो ये रास्ते खोल रहा है। यूसुफ अलैहि सलाम ने कहा, आप मुझे मुल्क के खजानों पर मामूर कर दीजिए। ये क्या बात हुई, आम हालात में तो ये बात बड़ी नेगेटिव लगती, लेकिन यूसुफ अलैहि सलाम ये जुमला इसलिए बोल रहे हैं कि उनको पता कि इस मुल्क में बहुत मुश्किल वक्त आ रहा है, मैं हिफाजत करने वाला और बाखबर हूँ। लिख लीजिए इस जुमले को, ये हैं वो दो खूबियाँ, हफीजुन अमीन, दीन के काम को सर्व करना चाहते हैं, वो बढ़ाना चाहें, वो अपनी कोई स्किल देना चाहें, या यूसुफ की तरह अमली मैदान में कहीं आपकी जिम्मेदारी लगे, कोई माली उमूर हो के कोई इंतजामी उमूर हो, ये दो मेयार अपने लिए चेक कर लीजिए। मैं हफीज हूँ, अमीन हूँ, जब तक ये दो खूबियां ना, उस बंदे को दीन का काम नहीं देना चाहिए, क्योंकि बाद में नुकसान दीन को होगा। और दूसरी बात देखिए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अंदर खूबी थी, खुद ही पेश कर दी। इससे ये भी पता चलता है कि अगर आपके अंदर कोई खूबी हो और आपका तज़किया भी हो चुका हो तो आप खुद को पेश कर सकते हैं। और याद रखिए कि आज भी अच्छे स्टूडेंट्स जब यूनिवर्सिटियों से भी पढ़ के भी नहीं निकले होते, उनको जॉब्स मिल चुकी होती हैं। ये जो आज माजरत के साथ कहूँगी, हमारे यहाँ है ना कि जॉबलेस, अनएम्प्लॉयमेंट, वो देखो मास्टर्स करके रेडी लगाया हुआ है, ये गलत चीज़ है। अच्छे स्टूडेंट्स को कोई इंस्टीट्यूट जाने नहीं देता। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाकर देखिए, जहाँ कल पढ़ते थे वहीं आज पढ़ा रहे हैं। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा ही है। अब उनकी ज़िंदगी का तीसरा दौर शुरू हो रहा है। چونکہ اپنی روح کو اللہ کے دین کے ساتھ اللہ کے فیصلوں کے ساتھ راضی کر چکے تھے، نفس امارہ نفس مطمئنہ میں ڈھل چکا تھا، تو اب اللہ تعالیٰ ان کو ایک اور جگہ پر لے کر جا رہے ہیں، اور نبی کی گود سے عزیز مصر کا گھر، وہاں سے نکلے تو جیل میں، اور اب جیل سے نکل رہے ہیں تو مصر کے تخت پہ، کیونکہ حالات جیسے بھی ہوں محسن بن کر رہے. اللہ تعالیٰ ایسے اسی لیے فرما رہے ہیں، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا قبضہ دے دیا. ذرا یہ جملہ سوچئے، اور اس دن کا جملہ سوچئے، اقتلو یوسف، دشمن کچھ بھی چاہیں آپ راضی رہیے اللہ پہ، بڑے سے بڑے مخالف آپ کو لوگ قتل سے زیادہ کیا کریں گے. اور کبھی اپنے کسی رشتہ دار پہ غصہ آئے تو یہ کہا کریں، میرے رشتہ داروں نے مجھے کنویں میں تو نہیں پھینکا، کیونکہ ہم انہیں سے کٹتے ہیں جن سے جڑنے کا حکم ہے. اور آج اس کے اپوزٹ کے اللہ نے یوسف کو ملک کے اندر، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ جہاں کہیں چاہے رہے سہے، ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، ہم نیکوکاروں کا سبب ضائع نہیں کرتے. یعنی اوپن ویزا ہے یوسف کے پاس، ایسے لگتا ہے امریکن پاسپورٹ مل گیا، سوائے چند ایک ملکوں کے ہر جگہ جائیں. یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت ہوتی ہے، اگر آپ دین کو سرو کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ایسے ریسورسز بھی آ جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاموش اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے. ہم عموماً اپنی دنیا بنانے اور بڑھانے کے لیے ان چیزوں کے پیچھے پھرتے ہیں، آپ اللہ کے دین کو سرو کرنا شروع کر دیجئے، وہ ہے نا غیب میں مدد کرنے والا، اور وہ اپنے پلانز خود بنانے والا، تو وہ آپ سے پھر خود بخود وہ کام لے گا. یقیناً ایمانداروں اور پرہیزکاروں کا آخرت کا اجر ہی بہت بہتر ہے، یعنی زندگی میں اگر کچھ اپس اینڈ ڈاؤن آ بھی گئے تو کیا ہوا، دنیا میں بہتری آ رہی ہے. تو یاد رکھیے کہ ایک انسان جب زندگی میں کسی بھی مشکل سے نکل آتا ہے تو اس کے زندگی میں ایک ٹھہراؤ اور ایک خوشی ضرور آتی ہے. نفس امارہ، جس کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں اور کریں گے، اس کو دبانے کا طریقہ کیا ہے؟ نفس لوامہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک ملامت کی کیفیت رکھی ہے. ساری دنیا آپ کو اچھا کہے نا، لیکن آپ خود کو اچھا نہیں کہیں گے اگر آپ غلط کام کر کے آئے ہیں. تو نفس لوامہ کو مضبوط کرتے جائیے، نفس امارہ خود بھاگ جائے گا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر نفس لوامہ کو اسٹرانگ کیسے کریں؟ یعنی میں آپ کو ایک ہوم ورک دیتی ہوں کہ آج کے بعد آپ اپنے نفس لوامہ کو اسٹرانگ کریں. 29ویں پارے میں سورت قیامت میں ہم پڑھیں گے، لیکن تب تک جانے تک پہلے سے اس کو اسٹرانگ کریں. تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ محاسبہ کیجیے، اپنا حساب لیجئے، میں ہوں کیا، کیونکہ محاسبے سے آپ کو تقویٰ حاصل ہوگا. اب اس کے طریقے کیا ہیں؟ نمبر ایک، استعاذہ، اللہ کی پناہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اٹھتے بیٹھتے کہا کریں، اور خاص طور پہ جو آج آپ کو دعا سکھائی جا رہی ہے. پھر اسی طرح توبہ اور استغفار سے محاسبہ ہوتا ہے. استخارہ کیجئے، اپنے کاموں کے استخارے کرنے لگ جائیں، آپ دیکھیں گے آپ کا نفس لوامہ اسٹرانگ ہوتا جائے گا، اور اچھے برے کا فرق پہلے ہی دکھنے لگ جائے گا، نہ کہ کام کرنے کے بعد. اسی طرح عتاب، خود کو سزا دینا. ایک ہوتا ہے عذاب، وہ نہیں ہے، عذاب ہو گیا، عتاب یہ کہ ابھی صرف ڈانٹ پڑی، ماں کہتی ہے میں ماروں، بچہ کہتا ہے چھوڑ دیں، یہ ہے عتاب. اسی طرح قسط، عدل اور انصاف پہ رہیے. جس حد تک اپنے ارد گرد عدل و انصاف کا بول بالا کریں گے، اتنا آپ کا نفس لوامہ اسٹرانگ ہوگا. اور مراقبہ، گردن ڈال کے بیٹھ جائیے، اپنا حساب کیجئے، حاسبو قبل ان تحاسبو، انشاءاللہ اپنے ایپ دکھیں گے. پھر اس کے بعد دوسری چیز ہے یقین، قوت ارادی، عزم و توکل، صبر اور ہمت. یعنی اپنے اندر یہ پازیٹیو تھنگس لائیے، پھر آپ کا انشاءاللہ نفس لوامہ مضبوط ہوگا اور نفس ہمارا دبتا جائے گا. اور صبری زندگی مجاہدہ، من جاہدہ، جس نے جہاد کیا، محنت کی، جاہد علی نفسی، آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اس طرح مستقل کوششوں سے فائدہ ہوگا. اب یوسف علیہ السلام کی زندگی کا اگلا دور دیکھیے، آیت 50 سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بھائیوں سے حسن سلوک کرتے دکھیں گے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ نفس امارہ کو شکست دے چکے. تو آیت 53 سے 82 میں جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں دیکھ لیجئے. پہلے سے نفس امارہ سے بچنے کا ایک ہی طریقہ، اللہ کی رحمت. حضرت یوسف علیہ السلام شاہ مصر کے دربار میں، اور برادران یوسف کی یوسف علیہ السلام کے پاس حاضری جو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بنجامین کو مصر بھیجنے پہ رضامندی، اور تقدیر اور تدبیر میں توازن، یہ ہیں وہ ٹاپکس جو اب ہم کنٹینیوسلی پڑھیں گے آیت نمبر 58 سے. وجہ اخوت یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا، اور انہوں نے اسے نہ پہچانا. کیسے پہچانتے؟ وہ تو اس کو مار چکے تھے. اور دوسری بات ہے کہ یوسف تو اس وقت بدن پہ قمیض بھی نہیں تھی، آج تو شاہی پوشاک میں تھا. آپ کے مخالفین سوچ نہیں سکتے کہ اللہ نے کل آپ کو دینا کیا. हालांकि वो तो यही सोचते हैं कि ये तो मर खप गए होंगे, ये तो अब रुल गए होंगे, तो याद रखिए जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। यूसुफ पहचान गए क्योंकि हिकमत भी थी और अल्लाह की तरफ से फरासत भी मिल जाती है मोमिन को, उसको बंदों का फर्क महसूस होने लग जाता है। जब इन्हें इनका असबाब मुहैया कर दिया तो कहा कि तुम मेरे पास अपने इस भाई को भी लाना जो तुम्हारे बाप से है, क्या तुमने नहीं देखा कि मैं पूरा नाप कर देता हूँ और मैं हूँ भी बेहतरीन मेजबानी करने वालों में से। बातों ही बातों में पूछ लिया, और ये वही सारी कहानी है जो आप बहुत दफा सुन चुके हैं कि वाकई फिर कहत आया पूरी इर्द गिर्द के इलाके जिसमें कनान नाम का एक छोटा सा गांव था जो मुल्क शाम में था, वहां ये सारी कौम रहती थी उस दौर में बनी इसराइल के लोग, तो वहां से मारूफ हो गया कि मिस्र में एक बादशाह और वो बड़ी मामूली सी कीमत पे गल्ला देता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बहुत ही हिकमत अमली से सेविंग्स की थी और अब ना सिर्फ है कि उसको खुद खा रहे थे बल्कि दूसरों को भी दे रहे थे। यहाँ से पता चलता है कि जब शॉर्टेज हो और लॉकडाउन हो तो अपने ही घर नहीं भर लेने चाहिए कि टॉयलेट पेपर ही ना दुनिया में मिले और ऐसे लगे कि दुनिया की सबसे अहम चीज़ ही है। ये हुआ आपने भी देखा, तो जब कभी मोहसिन होंगे तो आप अपने साथ दूसरों को भी लेकर चलेंगे। अब भाई आए, बिन्यामीन जो मां से सगे थे बाप से भी सगे थे वो घर में थे, बाकी सारे आगे। अब यूसुफ तो जाहिर है कि भाई को मिलना चाह रहे थे, तो कहने लगे कि भाई को भी लेकर आना और मैं मेजबानी करने वाला। कोटा सिस्टम था, जितने आएंगे उतने ही मिलेगा, बस अगर तुम इसे लेकर मेरे पास ना आए तो मेरी तरफ से तुम्हें कोई नाप भी ना मिलेगा बल्कि तुम मेरे करीब भी ना भटकना। उन्होंने कहा, हम इसके बाप को, नोट कीजिएगा अदब का अंदाज, देखिए अल्लाह किसी को ऐसे ही नहीं देता, याद रखिए अल्लाह की सुन्नत है। एक ही बाप के बच्चे थे, बाद में तौबा भी कर ली बल्कि नबूवत तक मिली, लेकिन माओं का फर्क था, माँ के साथ तरबियत का बहुत गहरा ताल्लुक है। एक ही बाप की दो औलादें हों, बच्चों में माँ की वजह से जमीन आसमान का फर्क होता है। आप पूरी सूरत में देख रहे हैं यूसुफ के बात करने का अंदाज और आगे बिन्यामीन के, ये बिल्कुल मिलता हुआ पोलाइट किड्स, लेकिन बाकी जो वो हमेशा लठमार स्टाइल है। ये भी तो कह सकते थे ना कि हमारा भाई और हमारे अब्बू उसके अब्बू को इसके बारे में फिसलाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे। तो इधर नोट कीजिएगा एक जुमला, अल्फाज के इस्तेमाल सही करें, याद रखिए दिन रात वो लोग दुआएं लेते हैं जो खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, और बास दफा हमारे दिल में कुछ नहीं होता लेकिन हमारे अल्फाज अच्छे नहीं होते। अपने खिदमतगारों से कहा कि इनकी पूंजी इन्हीं की बोरियों में रख दो कि जब लौट कर अपने अहलो याल में जाएं और पूंजियों को पहचान लें तो बहुत मुमकिन है कि ये फिर लौट आए। एहसान कर रहे हैं कि चीज भी दे दो पैसे भी वापस कर दो, और एक तो देखना चाह रहे थे कि ईमानदार कितने हैं, दूसरा ये कि एक बहाना दिया। तो ये हिकमतें होती हैं, ये वक्त के साथ इंसान को समझ आती हैं। जब ये लोग लौट कर अपने वालिद के पास गए तो कहने लगे, हमसे तो गल्ले का नाप रोक दिया गया, अब आप हमारे साथ हमारे भाई को भेजिए कि हम पैमाना भर कर लाएं, हम इसकी निगेबानी के जिम्मेदार हैं। खुद को जिम्मेदार बना रहे हैं, अल्लाह के जिम्मे में डालते तो शायद पहले भी मामला ना बिगड़ता। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे तो इसके बारे में तुम्हारा बस वैसा ही एतबार है जैसा इससे पहले इसके भाई के बारे में था, बस अल्लाह ही बेहतरीन मुहाफिज और वो सब मेहरबानों से बड़ा मेहरबान है। यहाँ लगता है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको कोई ताना दिया तो नहीं, ताना नहीं है ये, पिछली गलती का एहसास दिलाना बच्चों को इस्लाह की नीयत से, ये अच्छी बात है ताकि आइंदा वही गलती ना कर दे, और बच्चे तो फिर बच्चे ही होते हैं। और लिहाजा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको उनकी पिछली बात याद दिलाई कि अगर इस दफा भी कोई प्लॉटिंग की हुई है तो फिर उससे बच जाए, बल्कि ये एक अच्छा जुमला है, बच्चों को पहले से वार्न कर दें कि हमें तुम्हारा वो पिछला गुनाह या तुम्हारी वो पिछली खराबी या पिछला वक्त भूला नहीं है जो तुम कर चुके थे। जब उन्होंने अपना असबाब खोला तो सरमाया मौजूद पाया जो इनकी जानिब लौटा दिया गया था, कहने लगे, ए हमारे बाप, हमें और क्या चाहिए, देखिए तो हमारा सरमाया यानी कैपिटल भी वापस लौटा दिया गया, हम अपने खानदान को रसद ला देंगे और अपने भाई की निगरानी रखेंगे और एक ऊंट के बोझ का गल्ला ज्यादा लाएंगे, ये नाप तो बहुत आसान है। यानी लॉजिक समझा रहे हैं कि अब हमारे साथ भाई को भी जाने दीजिए अगले ट्रिप में। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तो इसे हरगिज हरगिज तुम्हारे साथ न भेजूंगा जब तक कि तुम अल्लाह को बीच में रखकर मुझे कौल और इकरार न दो कि तुम इसे मेरे पास पहुंचा दोगे। केयरफुल होना चाहिए, अगर किसी शख्स को आप एक बार फिर आजमा रहे हैं तो फिर उसको ऐसे ही नहीं आजमाना चाहिए, उसको जरूर उन चीजों से गुजारिए जो चीजें पहले वजह बनी थी। पिछली दफा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने ऐसी कोई बात नहीं की थी सिवाय इस एक सूरत के कि तुम सब गिरफ्तार कर लिए जाओ, यानी अल्लाह पे नजरें लगाते हैं कि अल्लाह की तरफ से कोई आफत आ गई तो और बात है। जब उन्होंने पक्का कौल और इकरार दे दिया तो उन्होंने कहा, हम जो कुछ कहते हैं अल्लाह इस पर निगहबान है। क्या पता चला डॉक्यूमेंटेशन कर लेनी चाहिए, एग्रीमेंट्स लिख लेने चाहिए, क्योंकि बाद में अमूमन लोग भूल जाते हैं। और याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा है, मेरे बच्चों तुम सब एक दरवाजे से ना जाना बल्कि कई जुदा जुदा दरवाजों से जाना। मैं अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली किसी चीज को तुमसे टाल तो नहीं सकता, हुक्म सिर्फ अल्लाह ताला ही का चलता है, मेरा कामिल भरोसा उसी पर है और हर एक भरोसा करने वाले को इसी पर भरोसा करना चाहिए। डर था कि इतने खूबसूरत जवान 10 बेटे इकट्ठे निकलेंगे, नसरे बत न लग जाए या कहीं कोई इनको चोर ना समझ ले, तो हजरत याकूब का एक बाप होने के नाते यहाँ खूबसूरत मिजाज है, बच्चों को समझा बुझा कर ही घर से निकालना चाहिए। और साथ ही कह रहे हैं कि जो होने वाली बात है वो तो होगी। जब वो इन्हीं रास्तों से जिनका हुक्म इनके वालिद ने इन्हें दिया था गए, कुछ न था कि अल्लाह ने जो बात मुकर्रर कर दी है वो इससे इन्हें जरा भी बचा ले। मगर याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में एक ख्याल पैदा हुआ जिसे उन्होंने पूरा कर लिया। बिला शुबा वो हमारे सिखलाए हुए इल्म के आलिम थे, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते, यानी नबूवत की रोशनी में अपने बच्चों की ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन होने वाली बात तो हो कर रही। अब एक कहानी का और ड्रॉप सीन 69 से आगे देखिएगा। आ वैलैहि खाहु काल इन्नी अनाखुक। जरा सा सोचिए अपने दिल पे ले, कितने सालों के बाद दो सगे भाइयों की मुलाकात होने वाली है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए यह वक्त कितना ज्यादा हसास भी होगा और वो उस वक्त इमोशनल भी हो सकते हैं। लेकिन अच्छे लोग अपने जज्बात पे हमेशा काबू पाते हैं, जज्बातियत नहीं आनी चाहिए, जज्बात तो अच्छी चीज है। और वो कैसे, वलम्मा दखलु अला यूसुफ आवा इलैहि अखाहु काल इन्नी अना अखूक। ये सब जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गए तो इसने अपने भाई को अपने पास बिठा लिया। जरा सा विजुलाइज कीजिए स्टोरी की, बहुत सारी चीजें बीच में स्लॉट्स की तरह मिसिंग होती हैं, लेकिन उसको आपने मैंने अपने इमेजिनेशन से देखना होता है। दो भाई हैं और क्या कह रहे हैं, और कहा मैं तेरा भाई यूसुफ हूँ, बस ये जो कुछ करते रहे इसका कुछ रंज न कर। इससे उलमा कहते हैं कि इसका अंत के छोटे भाई के साथ भी उनका मामला कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। और फला तब तईस कहकर एक बहुत बड़ी बात की, हम दुख सुख करते हैं, हम इतने साल बाद पाकिस्तान इंडिया या बांग्लादेश जाएं तो पता नहीं बहनों के साथ क्या क्या दुख सुख करें, और सुनाओ सास क्या कहती है और भाभियों के क्या हालात हैं। नहीं, याद रखिए कितना बड़ा दिल था यूसुफ का कि लोगों के सारे दिए हुए गम दिल के बर्तन में समेट कर ऊपर से जिप लॉक कर दिया। गमों के मुकाबले में नेमतों का तस्करा करने से गम खत्म हो जाता है। और याद रखिए कि जितना ज्यादा पिछले गमों को भुलाएंगे उतनी अगली खुशियां आपके दिल में जगह पाएंगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी इसकी मिसाल है। आप आगे जाकर देखेंगे इंशाल्लाह कि कैसे उनकी जिंदगी में ये सारी बातें आती हैं। हम तो ऐसे वक्तों में जब अल्लाह की मदद आने वाली होती है हम अपने आप को दूसरी ही चीज के अंदर ले जा चुके होते हैं। फिर जब इन्हें इनका सामान असबाब ठीक ठाक करके दिया तो अपने भाई के असबाब में पानी पीने का प्याला रखवा दिया। फिर एक आवाज देने वाले ने पुकार कर कहा, ऐ काफले वालो तुम लोग तो चोर हो। उन्होंने इनकी तरफ मुंह फेर कर कहा, तुम्हारी क्या चीज खो गई? जवाब दिया, शाही पैमाना गुम है, जिसे ले आए से एक ऊंट के बोझ का गल्ला मिलेगा, इस वादे का मैं जामिन हूं। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम तुमको खूब इल्म है कि हम मुल्क में फसाद फैलाने के लिए नहीं आए और ना हम चोर हैं। उन्होंने कहा, अच्छा चोर की क्या सजा है अगर तुम झूठे हो? जवाब दिया, इसकी सजा यही है कि जिसके असबाब में से पाया जाए वही इसका बदला है, हम तो ऐसे जालिमों को यही सजा दिया करते हैं। बस यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनके सामान की तलाशी शुरू की, अपने भाई के सामान की तलाशी से पहले, फिर इस पैमाने को अपने भाई के सामान यानी जिम्बील में से निकाला, ट्रेवलिंग बैग कह लीजिए। हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए इसी तरह ये तदबीर की। ये बादशाह के कानून की रो में से अपने भाई को ना ले सकता था, यानी उस वक्त मिस्र का जो कानून था, लॉ था, उस पे तो ये इम्प्लीमेंट ना होता, लेकिन शरीयत इब्राहिमी में यही था कि चोर की सजा क्या होती थी, 1 साल के लिए उस बंदे का गुलाम बना दिया जाता या उसकी खिदमत पे मामूर किया जाता जिसके पास से वो सामान निकलता, उसी का तस्करा। मगर ये कि अल्लाह को मंजूर हो हम जिसके चाहें दर्जे बुलंद कर दें और हर जिल्म पर फोकियत रखने वाला दूसरा जिल्म मौजूद है, फोक कुल्ली जिल्म नलीम, यानी हर आलिम से बड़ा आलिम और सब आलिमों से बड़ा अलीम है। तर्जमे के एतबार से ये आयात मुश्किलातुल कुरान में है, इनकी तफसीर में बहुत सारे इश्काल पड़ते हैं, मेरा आपको उस पर कोई कंसर्न नहीं है। हमें इतना पता है कि वकजा अली का किदना अली यूसुफ, ये जो कुछ हो रहा है ये कोइंसिडेंसेस हैं या प्लान्ड है, लेकिन अल्लाह ताला इसकी निस्बत अपनी तरफ ले रहे हैं कि हमने यूसुफ के पास बिन जमीन को रखने के लिए ये तरीका इख्तियार किया था और अल्लाह ताला अपनी हिकमतों को खुद ही जाने। और अल्लाह ताला के इल्म के आगे आप और मैं तो बात भी नहीं कर सकते। तो आयत 77 में चोरी का इल्ज़ाम और यूसुफ का नफ्स पे काबू आप अपने ऊपर लीजिए। कोई आपके ऊपर ऐसे चोरी के इल्ज़ाम लगाने लगे तो आपको कैसा लगेगा? अब सुनिएगा, उन्होंने कहा, अगर इसने चोरी की यानी बिन्यामीन ने तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, इसका भाई यानी यूसुफ, नोट कीजिएगा, यूसुफ के सामने बैठकर उसको बुरा कह रहे हैं, इसका भाई भी पहले चोरी कर चुका। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस बात को अपने दिल में रख लिया और इनके सामने बिल्कुल जाहिर ना किया, कहा कि तुम बदतर जगह में हो और जो तुम बयान करते हो अल्लाह ही इसको खूब जानता है। सवाल पैदा होता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पे ये चोरी का इल्ज़ाम क्यों लगाया? बचपन में कहते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने घर की रोटियां जाकर फकीरों में बांट आते थे, अपने हिस्से की चीज़ें दे आते थे, तो उसी से घर में ये बात मारूफ थी, वल्लाहु आलम। लेकिन यहाँ नोट कीजिएगा, एक तरफ क्या कह रहे हैं, फ़कद सरका खुल्लहु मिन कब्ल, और अगली ही आयत में देखिए, कालू या अय्युहल अज़ीज़, कई दफ़ा रिश्तेदारियों में ऐसा ही होता है, दिलों में कुछ और होता है और ज़ुबानों पे कुछ और होता है। उन्होंने कहा, ए अजीज़े मिसर, इसके वालिद बहुत बड़ी उम्र के बूढ़े शख्स हैं, क्या इनके वालिद नहीं थे? ये है अंदाज नोट करने का, और इसी से फिर पता चलता है कि कौन किधर से आया। उन्होंने कहा, अजीज़े मिसर, इसके वालिद बहुत बड़ी उम्र के बिल्कुल बूढ़े शख्स हैं, आप इसके बदले में हम में से किसी एक को ले लीजिए, हम देखते हैं कि आप बड़े नफीस नेक इंसान हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, हमने जिसके पास अपनी चीज़ पाई है इसके सिवा दूसरे की गिरफ्तारी करने से अल्लाह की पनाह चाहते हैं, ऐसा करने से तुम यकीनन नाइंसाफी करने वाले हो जाएंगे। नहीं, रूल्स ब्रेक नहीं किए, लॉ को अपने हाथ में नहीं लिया। जब ये इससे मायूस हो गए तो तन्हाई में बैठकर मशवरा करने लगे। इनमें से जो सबसे बड़ा था, ये वही है जिसने पहले भी कहा था कि यूसुफ को कत्ल नहीं करो बल्कि कुएं में डाल दो, क्या कहा? इसने कहा, तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे वालिद ने, यहां भी अपने नहीं कह रहा, तुम्हारे वालिद ने तुमसे अल्लाह की कसम लेकर पुख्ता कौलो इकरार लिया है, और इससे पहले यूसुफ के बारे में तुम कोताही कर चुके हो, यह है गिल्टी कॉन्शियस। इतने साल गुजर गए लेकिन गुनाह का बोझ दिल से नहीं गुजरा। बस मैं तो इस सरजमीन से ना टलूंगा जब तक के वालिद साहब खुद मुझे इजाजत ना दें, या अल्लाह ताला मेरे इस मामले का फैसला कर दे, वही बेहतरीन फैसला करने वाला है। तुम सब वालिद की खिदमत में वापस जाओ और कहो कि अब्बा जी, आपके साहबजादे ने चोरी की है और हमने वही गवाही दी थी जो हम जानते थे, हम कुछ गैब की हिफाजत करने वाले ना थे। आप इस शहर के लोगों से दरियाफ्त फरमा लें जहाँ हम थे, और इस काफिले से भी पूछ लीजिए जिसके साथ हम आए हैं, और यकीनन हम बिल्कुल सच्चे हैं। ये इतने दलाल यूसुफ की बार में क्यों ना दिए? इससे पता चलता है कि जब बंदा सच्चा होता है ना तो हर मुमकिन अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता है, और जब दाल में कुछ काला हो, कुछ खट्टा हो और पता नहीं क्या कुछ हो, तो उस वक्त फिर इंसान जान छुड़ाता है और किस तरीके से अपने आप को पीछे से पीछे रखता है। और खुद को सच्चा समझना और खुद सच्चा होना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो आयत 83 से 101 के टॉपिक्स देखिएगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का रद्द अमल, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हकीकत जाहिर कर दी, याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई लौट आएगी, अभी आप देखेंगे, बनी इसराइल की मिस्र आमद का जरिया यही वाकया बना, क्योंकि लोग पूछते थे कि ये बहुत बड़ा सवाल था अल्लाह के नबी के सामने, जिसकी वजह से ये पूरी सूरत नाजिल हुई कि ये बताइए कि मुल्क शाम से ये मिस्र में कैसे आ गए। तो ये तारीखी वाक़यात जो अरबों को बिल्कुल भी नहीं पता थे, अल्लाह ने इस वाक़े के जरिए अपने नबी के दिल पर इल्का कर दिए। और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हसीन ख्वाब की तबीर आप देखने वाले हैं। ये हैं झलकियाँ और ये है ट्रेलर आने वाली आयात का। यकीनन आप इसको स्टोरी की तरह एंजॉय भी करते होंगे, और इतने मॉरल्स तो दुनिया की किसी कहानी और ड्रामे में नहीं मिलते हैं, जो इस एक बहुत ही खूबसूरत सी सूरत में आपके और मेरे सामने है। शर्त यह है कि हम इस पे गौर व फिक्र करने वाले हों। याकूब अलैहिस्सलाम का जुमला सुनिए, जब उन्होंने ये सारी बातें सुनी और इस तरह का मामला हुआ, काल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अम्रा फसब्रुन जमील। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो नहीं बल्कि तुमने अपनी तरफ से बात बना ली, बस अब सब्र ही बेहतर है। बापों को सब्र करना पड़ेगा बेटों को साथ रखने के लिए। करीब है कि अल्लाह ताला इन सब को मेरे पास ही पहुंचा दे, वही इल्म व हिकमत वाला है। फिर इनसे मुंह फेर लिया और कहा, हाय यूसुफ। ये क्या हुआ? क्या कहना चाहिए था? हाय बिन्यामीन, क्योंकि अभी तो बिन्यामीन की चोट लगी। तो याद रखिए, जब मरग वाले घर में भी आप लोगों को, पिछलों को याद करते देखें तो इस बात को समझ जाते हैं, अगला गम पड़ता है ना तो पिछले भी सारे उठ जाते हैं। यही बात थी, दिल में अभी तक यूसुफ थे। देखे बेटों ने चाहता बाप की तवज्जो ले लें, मोहब्बत दूर करके बाप की अपनी मोहब्बत लेनी चाहिए। आज तक यूसुफ की मोहब्बत दिल से ना निकली। आज भी कुछ बच्चियां ससुराल में जाने के बाद यही ना समझी का मामला करती हैं कि शौहर से उसकी माँ बहन और भाइयों की मोहब्बत छीन लूं ताकि वो सारी भी मुझे ही मिल जाए। कभी भी नहीं मिलेगी, बल्कि शौहर वाली मोहब्बत भी खत्म हो जाएगी। इनकी आंखें बवजह रंजो गम के सफेद हो चुकी थीं और वो गम को दबाए हुए थे। बेटों ने कहा, वल्लाही आप हमेशा यूसुफ की याद ही में लगे रहेंगे। जहर उनके अना पे चोट पड़ी कि ये तो अभी तक इनके दिल में रह रहा है, हम तो उसको कुएं में फेंक आए। यहाँ तक कि घुल जाए या खत्म ही हो जाए तो माँ बाप के साथ बात करने का अंदाज कोई बहुत अच्छा नहीं है बेटों का। उन्होंने कहा, मैं तो अपनी परेशानी और रंज की फरियाद अल्लाह ही से कर रहा हूँ, मुझे अल्लाह ताला की तरफ से वो बातें मालूम हैं जो तुम नहीं जानते। क्या थी ये बातें? ख्वाब की ताबीर और सच्चे मोमिन की भी ये अलामत है। नोट कीजिएगा, बड़ी खूबसूरत बात है, इंतजार उल फर्ज है ये। अल्लाह के नबी के एक हदीस से पता चलता है कि बुरे दिनों में अच्छे दिनों का इंतजार बेहतरीन इबादत है। तो अल्लाह के बंदे ईमान वाले और ये तो अंबिया कराम थे, वो कभी भी मायूस नहीं होते। मेरे प्यारे बच्चों, तुम जाओ और यूसुफ अलैहिस्सलाम की और इसके भाई की पूरी तरह तलाश करो और अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो। यकीनन रब की रहमत से नाउम्मीद वही होते हैं जो काफिर हैं, तो मायूस नहीं होना। देखिएगा याकूब अलैहिस्सलाम की दुआ आयत 86 में, इन्नमा अश्कु बसी व हुज़्नी इलल्लाह। इसको हिर्ज़े जान बनाइए, आपके दिल से निकले, आपकी जुबान पे हो, फिर देखिए क्या होता है। तो ये कैसे होता है, जरा से इसका तकाबुल करते हैं अपने हालात से। हम लोगों को सुनाते, उसको सुना, फोन ढूंढेंगे, वो नहीं मिलेगा, तो फिर हम परेशान होंगे, कहेंगे नेट खोलो, ये करो, फोन उधर इधर इधर, उसको नहीं, कुछ साथ घर बैठे उसको सुनाए। नहीं, खुद से पूछिए, क्या परेशानी और गम के वक्त हमारी फरियाद करो अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ तो नहीं होता? खुद से पूछा करें, सबसे पहले किसका ख्याल आता है परेशानी में? शौहर का, माँ बाप का, भाई का, बच्चे का, बेटे का? तो फिर इस्लाह की जरूरत है। और अगर इल्लाह है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। हमें इस बात का यकीन होना चाहिए कि हमारी परेशानी और गम अल्लाह के सिवा कोई दूर नहीं कर सकता। पीछे पड़ के आए, यमसस्कुल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहा। इस पे ईमान बढ़ाइए, अकीदा तकदीर बेहतर कीजिए, देखिए फिर आप कैसे दुनिया में जिएंगे खुशियों के साथ। सहाबत अपने जूते का तस्मा टूटने पर भी अल्लाह ही को पुकारते थे, तो फिर मुश्किल और मुसीबत में हम किसी और को क्यों पुकारें? और आप कहते हैं बस्सी उस गम को कहते हैं जो बंदा छुपाना चाह रहा है, वो फैलता ही जा रहा है। बस्सा कहते हैं फैलाने को, आयतुल आयात में भी था ना, बस्सा फैलाना, स्प्रेड करना। तो गम चेहरे से दिख रहा है, लहजे से दिख रहा है, हालांकि इंसान छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह आलामो मसाइब में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ रजू और यकीन कामिल रखना एक मोमिन की सिफत है। और इस बात का यकीन रखिए कि अल्लाह की मलकियत और बादशाहत पर कोई गालिब नहीं आ सकता। अब अपना अमल भी खुद से पूछिए, क्या मेरे अंदर ये सारी खूबियां हैं? कोई बात नहीं, नहीं है तो फिर पैदा करनी है इंशाल्लाह, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। फलम्मा दखलु अलैहि कालू या अय्युहल अजीज, फिर जब ये लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, तीसरी हाजिरी है उनकी भाई के दरबार में, तो कहने लगे, ए अजीज, हमको और हमारे खानदान को दुख पहुंचा है, हम हकीर पूंजी लाए हैं, बस आप हमें पूरे गल्ले का नाप दीजिए और हम पर खैरात कर दीजिए। अल्लाह ताला खैरात करने वालों को बदला देता है। बस ये थे वो जुमले जिसने यूसुफ का दिल पसीज दिया। पीछे याद कीजिए, बाप के सामने क्या बोल रहे थे, नाहनो उसबा, हम तो बहुत बड़ा गिरोह है, अकड़ थी, तकबर था, प्राइड थी। और आज कह रहे हैं हम फकीर हैं, हम पे सदका ही कर दीजिए। ये है तिल कल या मनुदाविलुहा बैनन्नास। यूसुफ का दिल ऐसा पसीजा के बोली पड़े। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, जानते भी हो कि तुमने यूसुफ और इसके भाई के साथ अपनी नादानी की हालत में क्या किया? देखिए, शर्मिंदा होने से बचा रहे हैं भाई को, ये नहीं कि तुमने किया, असल में तुम जाहिल थे ना, अनअवेयर थे, और तुम थोड़े ऐसे हो, तुम तो बहुत अच्छे हो। ये है विन विन। लिखिएगा एक जुमला, नफ्स हमारा गालिब होता है ना, तो हम फिर आंखें मटकाते हैं, कपड़े बाजुओं से कोनियों तक लेते हैं, कहते हैं देखा ये हुआ ना, मैं जीत गया ना, हो गई ना मेरी खैर। नहीं, आप जीत गए तो क्या, अगले को हरा के जीते तो क्या, विन विन, तुम भी जीतो हम भी जीते। देखिए, दिलों में रहने का ये राज है कि अपने मुखालिफ को शर्मिंदा होने से बचाइए। हम बेइज्जती करके, बातें सुना के, सारे मोहल्ले शहर को इकट्ठा करके, नेगेटिव प्रोपेगंडे करके कहते हैं, आप बताते हैं हम कितने सच्चे हैं। یوسف کا انداز کتنا مختلف ہے اور آج ہمارا انداز اللہ کی بنا. اب بھائیوں کو بھی ایک دم سمجھ آیا, جب یوسف نے خود ہی اقرار کر لیا تو کیا ہوا. انہوں نے کہا, کیا واقعی تو ہی یوسف علیہ السلام ہے؟ جواب دیا, ہاں میں یوسف علیہ السلام ہوں اور یہ میرا بھائی ہے, اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا. دیکھیے پھر اللہ کی طرف کریڈٹ. جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے نا, وہ کسی اچھے کام کا کریڈٹ اپنے ساتھ لیتے ہی نہیں ہے. میں نے نہیں کیا, میرا نام نہ لیجیے. دیکھیے صحابہ کرام چہروں پہ ڈھانٹے باندھ کے جاتے تھے جنگوں میں, تاکہ اگر ہم سے کوئی کارنامہ ہو جائے تو لوگوں کو ہماری پہچان نہ رہے. یقین کیجیے اخلاص کی دولت, یہی بات ان کی بڑائی کا ذریعہ بن کے آج تاریخ کے صفوں میں رقم ہے. آپ اخلاص کے ساتھ کام کرتے جائیے, نیکی کر دریا میں ڈال, دیکھیے گا آپ کا اخلاص کیسے رنگ لائے گا انشاءاللہ. بات یہ کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا. انہوں نے کہا, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے تجھے ہم پر برتری دی ہے, اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کرتے. کتنا دل پہ سکون اترا ہوگا یوسف کے. ظاہری بات ہے, دیکھیے مظلوم جب ظالم کو اس طرح کی کہہ لیجیے کہ اظہار کرتا دیکھے تو دل تو خوش ہوتا ہے نا کہ میں ہی سچا تھا, لیکن اس کے پیچھے کتنے سالوں کا صبر ہے. آپ سسرالی معاملات میں پریشان ہیں, آپ کسی اور معاملے میں کسی انسان سے بگڑے بنے, آج ہی جا کے بسم اللہ کر کے مل لیجئے. کیوں؟ کہ اس کے بعد یہ اللہ کی مدد آتی ہے. جواب سنیے یوسف کے بڑے دل ہونے کی دلیل. قال لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. جواب دیا, آج تم پر کوئی ملامت نہیں, اللہ تمہیں بخشے, وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے. میرا یہ کرتا تم لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دو, وہ دیکھنے لگیں گے اور آ جائیں اور اپنے تمام خاندان کو میرے پاس لے آؤ. یہ ہے محسنین کی صفات, کہ پہلے ان کو بلایا بھائیوں کو, پھر چھوٹے کو بلا لیا, اب باپ کے ساتھ باقیوں کو بھی لے آؤ. محسنین ہمیشہ دوسروں کو فائدہ دینے والے ہوتے ہیں اور معاف کرتے ہیں. یہی جملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بولے جب کہ مکہ والے 21 سال کے ظلم و ستم اور مختلف فتنوں کے بعد فتح مکہ کے موقع پر آپ کے سامنے تھے. اللہ کرے ہم بھی ایسے ہی ہوں اور اسباب بھی ساتھ اختیار کر رہے ہیں, اپنا کرتا دے رہے ہیں. جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا, مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, اگر تو مجھے سٹھیایا ہوا قرار نہ دو. کیوں بھائی, اب کیوں آ رہی ہے؟ یوسف پہلے بھی تو تھوڑے دور ہی تو تھے اتنے سال سے, تب خوشبو نہیں آئی. تو یاد رکھیے اللہ انبیاء کرام کو بھی اسی وقت سجھاتا ہے جب کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. وہ کہنے لگے کہ واللہ ہی آپ اپنے اسی پرانے خبت میں مبتلا ہیں. بات کرنے کا انداز دیکھیے, یہ کون ہوں گے بھلا بتائیے, بیٹے تو نہیں ہیں, وہ تو مصر سے ابھی چلے ہیں. یہ بیٹوں کی بیویاں اور گھر والے ہیں. کہنے والا نے کہا کہ بیٹا جیسے ماں باپ سے بات کرے گا نا, اس کی بیوی اور اس کے بچے بھی کل ویسے ہی کریں گے. تو بیٹے بعض وقت اپنے ماں باپ کو خود باتیں کرواتے ہیں. جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا, اسی وقت پھر بینا ہو گئے. کہا, کیا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا, ابا جی آپ ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے, بے شک ہم قصوروار ہیں. تو یہ کرتے کی کرامت تھی؟ نہیں, یاد رکھیے وہ کرتا ہی تو دیکھا تھا خون میں ڈوبا ہوا, جس کے بعد رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئیں. تو کرامتیں کرتوں کپڑوں میں نہیں. بابا جی کا کرتا یا ان کی پگڑی یہ کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ انبیاء کرام کے معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے دکھاتے ہیں. بیٹوں نے ذرا سی دل کی نرمی کا اظہار کیا تو باپ فوراً بول اٹھے, یعنی بچوں کو معاف کرنے میں ذرا سی بھی دیر نہ لگائیے. بچوں نے کہا, یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. تو باپ نے یہ نہیں کہا چلو بھاگ جاؤ اتنے جرم کر کے آگے اور یہ وہ, نہیں. قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم. کہا, اچھا میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا, وہ بہت بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربانی کرنے والا ہے. اللہ اکبر. سوف سے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سحریوں کا وقت ہے. بگڑی ہوئی اولادوں, دکھ دی ہوئی اولادیں, یعنی وہ اولادیں جو آپ کے دلوں کو دکھی کر کے چلی گئیں یا پہنچ گئیں کہیں, ان کے لیے سحریوں میں رب کو پکارے. سحری کا وقت ہو, سجدے کی حالت ہو اور ایک بندہ اپنے رب کو پکار رہا ہو, اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے. ضرورت اس بات کی کہ انسان اللہ تعالیٰ پر نظریں لگائیں. تو بچوں کو بد دعائیں نہ دیا کریں, دعائیں دیں, ان کو خود ساتھ بٹھائیں, ان کو پیار کریں, ان کو وقت دیں. آپ نے کیوں ان کو مادی سہاروں کے سپورٹ کر دیا, آپ نے اپنی جگہوں پہ بیٹھ کر وہ کھیل رہے ہیں کود رہے ہیں اور آپ چاہے اس وقت قرآن ہی کیوں نہ پڑھ پڑھا رہے ہوں. ज़रूरत है इस बात की कि अपनी औलादों को तवज्जो दीजिए। आपकी सबसे बड़ी दौलत आपकी औलाद है। अगर इसमें से कोई बिगड़ गई, कोई ख़राब हो गई, कहीं इधर से उधर चली गई, तो आप समझ लीजिए कि आपकी सारी दौलत बेकार, आपके सारे मामले बिगड़ जाएंगे। और अल्लाह ताला आपको मुझे इससे बचा के रखे। और अपनी ज़िंदगी का एक असूल बनाइए कि आपने अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी अपनी औलाद को बनाना है। बाकी चीज़ें कमाना, खाना, बरतना, मिलना जुलना, सोशलाइजिंग, ये सब इसके अंडर आएगा। क्योंकि एक बच्चा भी बिगड़ गया ना, तो जन्नत में दिल नहीं लगेगा उनके बगैर। खैर, जब ये सारा घराना यूसुफ के पास पहुंच गया, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने माँ बाप को अपने पास जगह दी और कहा कि अल्लाह को मंजूर है तो आप सब अमनो अमान के साथ मिस्र में आओ। उनको वहां की रेजिडेंसी दे दी। शाही मेहमान बनकर आए हैं बनी इसराइल मिस्र में, और आगे देखिएगा चंद सालों में यहाँ से मारे खा के निकलेंगे, और यहाँ से निकलकर फिर ये मदीना में आकर आबाद हुए थे। हिस्ट्री पढ़ा करें, आपका दिल खुल जाएगा। कौमों के रूज और जवाल की कहानियां हैं इस बारे में। और यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब सच हुआ। क्या किया? और अपने तख्त पर अपने माँ बाप को ऊंचा बिठाया। ये नहीं कहा मैं तो बादशाह और मैं तो ख्वाब देखा हुआ और मैं तो इतना जरा माँ बाप को लग बिठाओ। नहीं, आप कितने अरूज के जीनों पर चढ़ जाएं, माँ बाप से आप बड़े नहीं हो सकते। और सब उनके सामने सजदे में गिर गए। तब कहा बजी, अब आप देखिए इन जुमलों का जो क्लाइमेक्स है, जो इनका हुसन है, मैं आपको उर्दू में तो ये नहीं बता सकती, इसलिए अरबी में बोल देती हूँ। रब्बी कद आतैतनी मिनल मुल्की वअल्लमतनी मिन तावील अहादीस फातिरस समावाती वल अर्द। और इससे पहले ऊपर क्या कहते हैं? अल्लाह अकबर। या अबती हाज़ा तावील रुया या मिन कब कद जालहा रब्बी हक्का वकद अख्सा नबी इज़ा अखरजनी मिनस सिजनी वजा अबिकुम मिनल बद्वी मिन बादी अन्नज़ग़ शैतान الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم। एक एक लफ्ज़ गोल्डन सेइंग है। सुनिए अब इनका जुमला। तब कहा बाजी, ये मेरे पहले के ख्वाब की ताबीर है, मेरे रब ने इसे सच्चा कर दिखाया, उसने मेरे साथ बड़ा एहसान किया जबकि मुझे जेल खाने से निकाला और आप लोगों को सहरा से ले आया इस इख्तलाफ के बाद के जो शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में डाल दिया था। मेरा रब जो चाहे इसके लिए बेहतरीन तदबीर करने वाला है और वो बहुत इल्म और हिकमत वाला है। ज़रा सा इस जुमले पे गौर कीजिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम हकीकत में मोहसिन भी थे और मुत्तकी भी थे। मसला आप देखिए कि भाइयों के जुल्म का जिक्र नहीं किया, देख लीजिए क्यों? क्योंकि उनके भाइयों का वो जुल्म भूल चुके थे। हम बस दफ़ा पिछली बातों को याद रखते हैं और कूट कूट के याद रखते हैं, जैसे बिल्ली पाल लेनी चाहिए ऐसे हम गर्म पालते हैं। याद रखिए कि अगर आप किसी को उसकी बातों पे माफ़ कर चुके हैं ना, तो फिर आप कभी उसका जिक्र नहीं करेंगे। फिर इसी तरह से आप देखिए कि जेल में जाने का जिक्र नहीं कर रहे कि उन औरतों ने मुझे जेल में डलवा दिया, बल्कि निकलने का जिक्र कर रहे हैं। पॉजिटिविटी दिख रही है, क्यों? इसलिए कि इमरात अजीज़ इकरार कर चुकी थी। आला ज़र्फ़ी है इसमें यूसुफ की, यानी ना तो खुद जिक्र किया क्योंकि भाइयों के दुख को भूल चुके थे, उसको माफ कर चुके थे। हम कहते हैं मैंने उसको माफ कर दिया लेकिन मेरे सामने ना आना, नहीं बिल्कुल भी नहीं। फिर इसी तरह देखिए माँ बाप से जुदाई का जिक्र नहीं किया, मिलने का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि नेमतों पर नजर थी। तीन चीजें मैंने बोली हैं, अगर आपने नहीं नोट की तो कर लीजिए। जो आपको दुख देता है ना, उसको भूल जाइए, और जो खुद इकरार कर लेता है कि हाँ आई वॉज रॉन्ग, उसको भी माफ कर दीजिए। और नेमतों पे नजर रखिए तो आपकी मेरी जिंदगी में भी इंशाल्लाह पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी की तो कोई गुंजाइश नहीं है हमारे दीन में। तो क्या पता चला, सारी बात शैतान पे डाल के भाइयों को शर्मिंदा होने से बचा लिया। अब अल्लाह के सामने यूसुफ है, हर नेमत तो मिल गई लेकिन अभी कुछ और नेमतें चाहिए। वो क्या? रब्बी कद आतैतनी मिनल मुल्की वअल्लमतनी मिन तावील अहादीस। ए मेरे परवरदिगार, तूने मुझे मुल्क अता फरमाया और तूने मुझे ख्वाब की ताबीर सिखलाई। ए आसमान और जमीन के पैदा करने वाले, तू दुनिया और आखरत में मेरा वली दोस्त और कारसाज है। तू मुझे इस्लाम की हालत में फौत कर और नेकों में मिला दे। एक एक खूबसूरत लफ्ज़ है यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ का। क्योंकि जब दुनिया की नेमतें मिल जाए ना, तो बस समझिए वापसी का सफर शुरू। जैसे अल्लाह के नबी के लिए आ गया था कि अब आपकी वापसी है। सूरत नसर उतरी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लगे। लोगों ने कहा ये रोने की बात है, या तो इस्लाम के गालिब होने की बात है, तो कहा कि अरूज के बाद ही तो जवाल होता है। तो यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम की ख़ास तौर पे ये दुआ लिखनी बिस्सालिहीन, मुझे नेक लोगों की सोहबत दे। क्यों? इसलिए कि नेक लोगों की सोहबत में नेकी करना आसान हो जाता। तो वफ़नी मुस्लिमन, मुझे इस्लाम की हालत पे मारना। क्यों? इसलिए कि जब आप इस्लाम की हालत में मरेंगे तो इस्लाम की हालत में वहाँ उठाए जाएंगे। याद रखिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये किरदार आपके मेरे से ज़्यादा आज हमारी यूथ के लिए रोल मॉडल है। हमारी यूथ की भी यही आजमाइश आने वाली है और आ चुकी है, सर पे सवार है। गले में पड़ती हैं वो औरतें जिन्होंने अपने हुस्न को नुमाइश का जरिया बना लिया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस तरह अल्लाह से जुड़े हुए थे, अल्लाह ने उनको बचा लिया था, इसी तरह दुआ कीजिए हमारी नस्लों को भी अल्लाह बचा ले। शर्त एक है कि अपने बच्चों को इस किताब से जोड़ दीजिए। आप इनको किताब दे दीजिए जो तकवा और अल्लाह का बंदा बनना सिखाती है। अल्लाह ताला फिर इनके दीन और ईमान की हिफाजत भी फरमाएगा। और साथ ही अल्लाह ताला अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात लाते हैं, आखिरी रुकू जो बिल्कुल खात्मे सूरत का है, जैसे हर स्टोरी के बाद उसका एंडिंग रिजल्ट होता है। फरमाया, ज़ालिक मिन अम्बाइल गैब, ये गैब की खबरों में से है जिसकी हम आपकी तरह वही कर रहे हैं। आप इनके पास ना थे जबकि उन्होंने अपनी बात ठान ली थी और वो फरेब करने लगे थे। क्या पता चला कि जब तक अल्लाह नबी को कोई बात ना बताए तो आपको वो बात नहीं पता होती। तो देखिएगा, यूसुफ अलैहिस्सलाम नफ्से मुतमईना की आला मिसाल की सूरत में दिख रहे हैं। अखलाक करीमा ना था, शिकवों की बजाय अल्लाह ताला के एहसानात और अच्छे दिनों का तذکرہ करते दिखते हैं। दुनिया की नेमतें मिलने के बावजूद खात्मा बिल खैर और सोहबते सालेहीन की तमन्ना है। जब तक एंड अच्छा नहीं होगा, आप और मैं नहीं बच सकते। तो 103 से 111 तक की आयात में क्या है? हक वाजे हो जाने के बावजूद भी अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। अल्लाह ताला में उनमें ना करे। ईमान लाने वालों की अक्सरियत शिर्क करती है और इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकाजा दावत इलाल्लाह, और तमाम रसूल इंसान थे। अब इसी को जरा देखिएगा, गो आप लाख चाहें लेकिन अक्सर लोग ईमानदार ना होंगे, ना हैं ना होंगे। इस आयत को हाईलाइट कीजिएगा, बाद पे इस पे जाके गौर व फिक्र करिएगा कि जब तक बंदा खुद ईमान पे आना ना चाहे, कोई दूसरा उसको ईमान पे नहीं ला सकता। आप इनसे कोई उजरत तलब नहीं कर रहे, ये तो तमाम दुनिया के लिए निरी नसीहत ही नसीहत है। यानी आप इस कुरान को विद पेमेंट्स नहीं, ये फ्री फॉर ऑल है, क्योंकि ये इंसानों के नाम उनके रब का पैगाम है। आसमान और जमीन में बहुत सी निशानियां हैं जिनसे ये मुंह मोड़े गुजर जाते हैं। ये किसकी बात है? कभी सूरज चांद सितारों को देखा, धूप को देखा, बारिश को देखा? ये उन लोगों की बात है जो इन चीज़ों को देखते हुए बेतहाई से गुजर जाते हैं और ये नहीं कहते कि सुबहान अल्लाह, ये मालिक की कारीगरी है, आर्टिस्ट्री है अल्लाह की। इनमें से अक्सर लोग बावजूद अल्लाह पर ईमान रखने के भी मुशरिक हैं। हाईलाइट कीजिए 106 को, ये है वो आयत जिसने मुझे पहली दफ़ा फिक्र लगवाई थी कि कहीं मेरे में भी शिर्क तो नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे हैं कलमा गो भी मुशरिक हो सकता है। आज हम तो दूसरों को ना माने, कलमा गो को तो हम बिल्कुल ही एग्जेम्प्ट कर दें। क्या वो इस बात से बेखौफ हो गए कि इनके पास अल्लाह के अजाबों में से कोई आम अजाब आ जाए या इन पर अचानक क्यामत टूट पड़े और वो बेखबरी ही में हो? अजाब कैसे आते हैं उनकी तरफ इशारा। आप कह दीजिए मेरी राह यही है, मैं और पैरोकार अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं पूरे यकीन और एतमाद के साथ, और अल्लाह पाक खैर मैं मुशरिकों में नहीं। खूबसूरत आयत है, दावत इल्लाह का खूबसूरत तरीका। चलते जाइए, लोगों को बताते जाइए, कुल हाजी सबीली अदू इल्लाह। ये था काम नबियों का, राज मेरे आपके जिम्मे लगा हुआ यही काम है। खुशी से दावत कीजिए, दावत इल्लाह का काम करने वाले अल्लाह के नुमाइंदे हैं। आपसे पहले हमने बस्ती वालों में जितने रसूल भेजे हैं सब मर्द ही थे जिनकी तरफ हम वही नाजिल फरमाते गए। क्या जमीन में चल फिर कर उन्होंने नहीं देखा कि इनसे पहले लोगों का कैसा कुछ अंजाम हुआ? यकीनन आखरत का घर परहेजकारों के लिए बहुत ही बेहतर है, क्या फिर भी तुम नहीं समझते? यहाँ तक कि जब रसूल नाउमीद होने लगे और वो कौम के लोग ख्याल करने लगे कि इन्हें झूठ कहा गया, फौरन ही हमारी मदद इनके पास आ पहुंची, जिसे हमने चाहा उसे निजात दी। बात यह है कि हमारा अजाब गुनाहगारों से वापस नहीं किया। यानी जब पकड़ आती है तो फिर बात बदली नहीं जाती। इनके बयान में अकल वालों के लिए यकीनन नसीहत और इबरत है। ये कुरान झूठी बनाई हुई बात नहीं, बल्कि ये तस्दीक है इन किताबों की जो इससे पहले की हैं, खोल खोल कर बयान करने वाला है हर चीज को, और हिदायत और रहमत है ईमानदार लोगों के लिए। تو یہ تھی سورت یوسف. کیا دیکھا؟ نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے صبر، تقوی اور احسان کی ضرورت ہے. بھائیوں کا اقرار جرم ہوا، الحمدللہ نفس لوامہ کی پکار تھی. بڑے سے بڑا جرم کر کے بھی کوئی پلٹ سکتا ہے، یہ اس بات کی بھی دلیل ہے. یوسف علیہ السلام صابر بھی دکھے پوری صورت میں، متقی بھی دکھے اور محسن بھی دکھے، نفس کی بڑائی کا شکار نہیں ہوئے. یعنی حالات جب بدل گئے تو حالت نہیں بدلی، چھچور پنے پہ نہیں آگے. بعض لوگوں کو چار پیسے کیا مل جائیں، ان کی چال بدل جاتی ہے، ٹون بدل جاتی ہے بات کرنے کی. اختیار ہونے کے باوجود بھائیوں کو معاف کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پر یہی کیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ اور میں کیا کریں گے؟ اگر کسی سے لڑائی ہے، جھگڑا ہے، ابھی لکھ لیجئے اس کلاس کے ختم ہونے کے فوراً بعد پہلا کام ان کو میسج کرنا ہے. فتنہ نفس سورہ یوسف کے حوالے سے، یعنی نفس کے فتنے آپ کو کہاں کہاں دکھے. مثلاً آپ دیکھیے کہ اخوان یوسف اور اسی سے مصر کی بیوی نفس امارہ کا شکار ہوئے اور گناہ کے مرتکب ہوئے، لیکن آتا ہے کہ دونوں نے بعد میں توبہ کر لی. پھر جب نفس لوامہ طاقتور ہوا تو سب نے استغفار بھی کی. یوسف علیہ السلام نفس کی بڑائی کا شکار نہ ہوئے اور سب کو معاف کر دیا. یوسف علیہ السلام نفس مطمئنہ کی اعلیٰ مثال تھے، تبھی تو مطمئن تھے. صرف وہ بندہ سکھ چین سے رات کو سوئے گا بغیر ٹرنکلائزرز کھائے اور بغیر مصنوعی سہاروں کے، جس کا دل صاف ہوگا. نیگیٹیوٹی کو دل دماغ سے نکال دیجئے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. تو ساری صورت تو پوری ہوئی. یوسف کے ظاہری حسن کا ایک بار تذکرہ نہیں آیا، بلکہ ہر جگہ باطنی حسن کا تذکرہ ہے. آج ہم اس صورت کو کیسے پڑھتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ پریگننٹ عورتیں اس لیے پڑھتی ہیں کہ بچہ خوبصورت ہو. شادی کے موقع پہ دلہن پہ پڑھ کے پھونک دو تو بڑی پیاری لگے گی، چاہے اللہ کی ساری حدیں ٹوٹتی ہوئی دکھے. اور نہ زلیحہ اور یوسف کی شادی ہوئی، ہم نے کیا کیا ان قرآن کو لوک داستانیں بنا دیا. یقین کیجیے اپنی ہر بچی جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی یا ہو چکی ہے اور وہ پریشان ہے، اس کو یہ صورت سنوائیے. کتنی دفعہ پڑھائیں، چل پانی پھونک دیں کہ یہ کر دیں؟ نہیں، ایک دفعہ پڑھائیے تفسیر سے. ہمارے پاس لنک ہے، ینگ بچیوں کے ساتھ پڑھائی تھی بہت ہی جنرل سے انداز میں. گھر جوڑنے اور رشتوں کو جوڑنے اور رشتوں کے اتار چڑھاؤ سکھانے والی صورت ہے. بیٹوں کو بھی پڑھائیے. کون سے بیٹوں کو؟ جو ایسے معاشروں میں جدھر دل پھکتے ہیں، ہاتھوں میں دل لیے ہوئے سوسائٹیز میں جو ینگ نسلیں پل رہی ہیں، ان کو اس صورت سے محروم نہ کیجیے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سے بہترین فائدہ اٹھانے والا بنائے. آگے چلتے ہیں سورت الرعد. انبیاء کرام کے قصوں پہ جو صورتیں تھیں وہ بیچ میں ایک پوز آ رہا ہے، حالانکہ اگلی صورت پھر ابراہیم ایک نبی کے نام پہ ہے. رعد کہتے ہیں تھنڈر کو. اللہ نے اس کی بات کیوں کر دی؟ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا خوبی تھی. 13 نمبر کی صورت ہے، 43 یعنی 43 آیات ہے، اور اس میں بہت ہی خوبصورت عمل ہے، اس لیے اس کا نام سورت الرعد ہے. دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را. تلک آیات الکتاب. والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. الف لام میم را. حروف مقطعات. یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے. سب حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. کیا خوبصورت انداز ہے. جیسے کبھی ریڈیو اسٹیشن آن کریں نا تو یہ خبریں آپ ایف ایم ریڈیو سے سن رہے ہیں، فلاں فلاں لوگ اپنے چینلز کا نام لیتے ہیں. خیر وہ تو ایک بہت ہی عجیب سا انداز ہے، لیکن یہاں دیکھیے کہ انزل الیک من ربک کہہ کر کہا کہ جب رب نے اتنے پیار اور اتنے اہتمام سے اس کتاب کو نازل کیا ہے تو خوشی خوشی لیجئے، اس کو بوجھل دل سے نہ سنیے. اور ساتھ ہی بتا دیا کہ آپ کی عقل کے چھوٹے سے برتن میں اگر اس کا کوئی حکم نہ بھی سما سکے، پھر بھی اس کو خوشی سے ڈالتے جائیے. اعتراض چھوڑ دیجیے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کہ یہ کیوں نہیں اور وہ کیوں نہیں، ہمیں تو اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل لگ رہا ہے. اور اگر ابھی بھی نہیں سمجھ آیا نا کہ کس اللہ کا کلام پڑھ رہے ہو تو سنو. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر وہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہے، اسی نے سورج اور چاند کو ماتحتی میں لگا رکھا ہے. نوٹ کریں، آپ کے میرے ماتحت ڈیپینڈنٹس یعنی ہمارے لیے کام کرنے والے ورکرز اور ہیلپرز ہیں سورج چاند. اتنے بڑے کس نے لگایا؟ آپ پر میں ہائر کر سکتے تھے ان کو؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہر ایک میعاد معین پر گشت کر رہا ہے، وہی کام کی تدبیر کرتا ہے، وہ اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے. کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو. لعلکم بلقائی ربکم توقنون. اے اللہ ہمیں اپنی ملاقات کا یقین دلا دے. جتنا زیادہ یہ یقین آئے گا اتنی زیادہ اطاعت آسان ہوگی. تو کیا سکھایا کہ کائنات پہ غور کرو, اس نے زمین پھیلا کر بچھا دی ہے اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کر دی ہیں اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے دوہرے دوہرے پیدا کر دیے, یعنی میل اینڈ فیمیل. یہ قرآن نے پہلے بتایا, سائنس نے بعد میں ڈسکور کیا. وہ رات کو دن سے چھپا دیتا ہے, یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. تو آئیے ذرا غور و فکر کرتے ہیں, کیونکہ قرآن پاک ہمیں خود کہتا ہے لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ. تو کائنات پہ غور و فکر سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلی بات یہ کہ کائنات اتنی فرما بردار ہے اللہ کی, اتنی اوبیڈینٹ کہ سیکنڈز اور منٹس کے فرق کے ساتھ سورج چاند نکل رہے ہیں. جو وقت اللہ نے دے دیا اسی پہ اتنے لیٹ نہیں ہوتے, مستقل کام کر رہے ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ چونکہ وہ اتنے فرما بردار ہیں اسی لیے آج ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو اللہ کہتا ہے پھر تم کیوں فرما بردار نہیں ہوتے؟ یاد رکھیے, جو اللہ کا بنے گا نا, اللہ اس کو دوسروں کے کام کا ضرور بنا دے گا. آج بھی ہمارے ذہنوں میں یہی ہے. کائنات کا حسن دیکھیے, سبز رنگ کو دیکھ کر کتنا آنکھوں کو سکون ملتا ہے. شاید جنت بھی سبز ہے. ہاں مدھا متان. ہمارے ماں باپ چونکہ وہاں رہ چکے تھے, تو آج آپ دیکھیے کہ جب آپ ذرا ایسی جگہ جن کا آپ ذکر آ رہا ہے اور جا رہا ہے دیکھے, تو آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں ملتی. اتنی دیر اسکرین کے ساتھ بیٹھتے ہیں, تھوڑی دیر جا کر سبزے کو دیکھا کرے ورنہ آنکھیں چندھیا جائیں گی. پھر آپ دیکھیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بہت ہی پیاری بات کی ہے, یسقا بماء واحد. اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا, آیت نمبر 4 میں سے پڑھتے ہیں اس کو. اور زمین میں مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے لگتے لگاتے ہیں, اور انگوروں کے باغات ہیں اور کھیت ہیں اور کھجوروں کے درخت ہیں, شاخ دار اور بعض ایسے کہ جو بے شاخ ہیں, سب ایک ہی پانی پلائے جاتے ہیں, پھر بھی ہم ایک کو ایک پر پھلوں میں برتری دیتے ہیں. اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانی ہیں. کیا نشانی ہے؟ پانی ایک ہے, اور بعد میں نکلتی چیزیں کیسی ہیں؟ کہیں سے اورنج نکلتے ہیں, اورنج کلر کے, جس میں تھوڑی سی کھٹاس اور تھوڑی میٹھا پن. کہیں سے میٹھے آم, کہیں کڑوے کریلے. جس طرح ایک ہی پانی سے, مٹی میں سے مختلف چیزیں نکلتی ہیں کیونکہ بیج مختلف ہے, اسی طرح اس وقت قرآن کی ایک ہی بارش برس رہی ہے ہمارے دلوں میں. لیکن آپ میں سے ہر ایک کے اندر سے مختلف فصلیں اگیں گی. لینے والے اپنے پوٹینشیل کے حساب سے لیتے ہیں, کس توجہ سے سن رہے ہیں اس سے ملے گا, جس شوق سے لیں گے. اور یاد رکھیے کہ آپ بھی اس وقت چھوٹے چھوٹے پھل ہیں, فروٹس ہیں آپ. آپ اس وقت اس کتاب کے پانی سے اگر واقعی پوری طرح خود کو سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا محسوس کرتے ہیں نا, تو کل آپ بہت میٹھے پھل بنیں گے. اور میں جب اس آیت کو صبح میں دیکھ رہی تھی تو میں آپ سب سے پیار کر رہی تھی. یقین کیجیے, جو آپ اس وقت آ کر یہاں بیٹھتے ہیں اور اس طرح اپنے آپ کو جما کے رکھتے ہیں کہ میں نے ہلنا بھی نہیں, میں نے واش روم میں بھی نہیں جانا, پہلے ساری ضرورتوں سے فارغ ہوتے ہیں, تو آپ سب میرے فروٹس ہیں. کیا ہوا اگر کوئی کھٹا ہے تو میرا, کیا ہوا اگر کوئی ذرا گل گیا تو کیا ہوا, کیا ہوا ذرا سا خشک ہے. بس درخت سے پیوستہ رہیں گے تو دعاؤں میں آئیں گے. میں نے اتنی صبح آپ سب کے لیے دعائیں کی, دل سے نکلی, میں نے کیا کرنی تھی. اگر یہ قرآن کی وحی آپ کے میرے دل پہ نہ پڑتی تو سچ بتائیے ہمارا یہ ٹیسٹ ہوتا؟ ہم کڑوے کریلے نہیں تھے؟ غصہ کیسے آتا تھا؟ اکثر اسٹوڈنٹ جب ملتے ہیں کہتے ہیں ہمیں اس قرآن سے یہ فائدہ ہوا, ہمارا غصہ چلا گیا. میں نے کہا اس کا فائدہ تو آپ کے گھر والوں کو ملا, بچے بےچارے آپ کے شر سے محفوظ ہو گئے, شوہر بھی بےچارے ہیں. جل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو. تو یاد رکھیے کہ یہ قرآن آپ کو میٹھا کر رہا ہے, پتہ نہیں چل رہا آپ کو. بیچ کے مرحلوں میں آپ دیکھیے آم کڑوا ہی ہوتا ہے, کھٹا ہی ہوتا ہے, کیریاں, کچی امبیاں. لوگ کہ یہ کیا میٹھی ہیں, آپ کے نہیں ابھی پکی نہیں ہے. آپ کا بھی من نہیں پکا اگر آپ کی ٹون ٹھیک نہیں ہوئی, اگر آپ کے اندر تقویٰ نہیں. ابھی اللہ کی بات سن کے ابھی بھی ریزنٹمنٹ ہوتی ہے, اور ابھی بھی اپنی تعریفیں سننے کو دل کرتا ہے, تو سوری ٹو سے دیٹ کہ بھی آپ کو مزید پکنے کی ضرورت ہے. جتنا تقویٰ آئے گا آپ اتنے میٹھے بنیں گے, اتنا آپ کا عمل زیادہ ہوگا, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. اگر تجھے تعجب ہو تو واقعی ان کا یہ کہنا عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا, یہی ہیں جن کی گردنوں میں توک ہوں گے, اور یہی ہیں جو جہنم کے رہنے والے ہیں, جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. دنیا میں اطاعت کا پٹا گلے میں نہ ڈالا, وہاں جہنم کے توک پہننے پڑیں گے. اور جو تجھ سے سزا کی طلبی میں جلدی کر رہے ہیں راحت سے پہلے ہی, یقیناً ان سے پہلے کی سزائیں بطور مثال گزر چکی ہیں, اور بے شک تیرا رب البتہ بخشنے والا ہے لوگوں کے بے جا ظلم پر بھی. اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ تیرا رب بڑی سخت سزا دینے والا ہے. آپ دیکھیے دو مختلف صفات اللہ کی ایک ہی آیت میں, अच्छों के साथ अच्छा बहुत है, और जब बुरे बनते हो तो उसको तुम्हें फिर बुरा बनकर तुम्हारी उस सरकशी की सजा देना भी आता है। और काफिर कहते हैं, इस पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी या मौजजा क्यों नहीं उतारा गया? बात यह है कि आप तो सिर्फ आगाह करने वाले हैं और हर कौम के लिए हादी है। मादा अपने शिकम यानी पेट में जो कुछ रखती है इसे अल्लाह बखूबी जानता है, और पेट का घटना बढ़ना भी हर चीज इसके पास अंदाजे से है। देखिए, प्रेग्नेंट औरत को भी नहीं पता उसके पेट में क्या है। चले, औरतें तो जाकर आज अल्ट्रासाउंड करवा लेंगी, ये बिल्लियों को क्या पता है और बंदरियों को क्या पता है? हर मादा का लफ्ज़ है इधर, सिर्फ वुमेन की बात नहीं है लेकिन अल्लाह को पता है। और ये घटना बढ़ना क्या है, पेट का बढ़ना या पेन्स का लगना ना लगना, ये सिर्फ अल्लाह को पता है। कब बच्चे के दुनिया में आने का वक्त है, आप सिर्फ टोकरी तैयार करके बैठे रहिए, अल्लाह ने जो वक्त लाना है खैर का लाएगा। कौन करता है ये सब कुछ फैसले? हर चीज़ उसके पास अंदाजे से है। तो आपका मेरा डेट ऑफ बर्थ बदल नहीं सकता, जो अल्लाह ने रखा है वही होगा। ज़ाहिरो पोशीदा का वो आलिम है, सबसे बड़ा और सबसे बुलंद वाला। तुम में से किसी का अपनी बात को छुपा कर कहना और बावाज़े बुलंद इसे कहना, और जो रात को छुपा हुआ हो और जो दिन में चल रहा हो, सब अल्लाह पर बराबर और यकसर। सोचिए उसके इल्म की क्या फिर हद होगी कोई? बोला यो दुहू हिफ्ज हुमा, फिर सच है ना, उसको तो आगे वाले पीछे सब बराबर दिखते हैं। तो क्या देखा है 12:26 में, आसमानी बिजली अल्लाह की तस्बीह करती है, अल्लाह ने उसका नाम जहाँ रख दिया, सुबहान अल्लाह। सिर्फ अल्लाह से मांगना फायदा देता है। अब आगे हक और बातिल की मिसालें भी आ रही हैं। हक का साथ देने वालों की सिफात भी पढ़ेंगे और हक के दुश्मनों का किरदार क्या होता है। तो क्या पता चला कि एक इंसान जितना कुरान पढ़ता है उसका दिल उतना खुलता है। और अब आयत नंबर 11 देखिएगा, नफ्स की शरारतें हैं। बड़े ही पुरदर्द मुकाम है ये सूरत रात का, कि दिल करता है सब छोड़ के पहले थोड़ी देर रो ले। तो नोट कीजिएगा, टॉपिक अगली आए जो आने वाली, अलर्ट हो जाए, इस पे बहुत खूबसूरत बात है। और वो क्या, हालात का शिकवा मगर हालत बेहतर नहीं करने देते। यानी मेरा नफ्स है ना, हर वक्त ये शरारते करेगा, हालात बड़े खराब, मुसलमानों पे बड़ी मुश्किलें, फलां जगह ये फलां फलां फलां, बिजली नहीं पानी नहीं, सब जुल्म करते लेकिन हमें हालत नहीं बदलने देता। और इसी को शायद मौलाना हाली ने कहा था ना, कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको आप अपनी हालत के बदलने का। ये है वो आज जो आने लगी है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सुनिएगा, इसके पहरेदार इंसान के आगे पीछे मुकर्रर हैं, जो अल्लाह के हुक्म से इसकी निगेबानी करते हैं। किसी कौम की हालत अल्लाह नहीं बदलता जब तक कि वो खुद इसे न बदलें जो इनके दिलों में है। अल्लाह तआला जब किसी कौम की सजा का इरादा कर लेता है तो वो बदला नहीं करता, सिवाय इसके कोई और भी इनका कारसाज नहीं। वो अल्लाह ही है जो तुम्हें बिजली की चमक डराने और उम्मीद दिलाने के लिए दिखाता है और भारी बादलों को पैदा करता है। ये है जी कौमों के रूज और जवाल का फलसफा, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन। कौमों की हालत क्यों नहीं बदलती, कब कोई कौम उभरती है कब कोई छुपती है, उसका फलसफा है इधर। कौमें अपने हालात बदलना चाहती हैं तो अपनी हालत बदलें, झूठ की हालत को सच में बदलें, सुस्तियों को छोड़ें चुस्तियों में आएं। और खास तौर पे वो उम्मत, वो कौम जिसको कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतम वसतम का लकब मिल चुका हो, और वो कौम जिसको अम्बिया कराम का काम दिया जाए वो देखें। आज आप देखिए कि दुनिया में कौन सी कौमें कामयाब हैं। बस आप देखिए कि वेस्टर्नाइज लोग बड़े कामयाब हैं, अमेरिकन लोग बड़े कामयाब हैं, जापानीज लोग बड़े कामयाब हैं। ज़रा नोट तो कीजिए, कौन सी कौमें कामयाब होती हैं जो जफाकश होती हैं, डेडिकेशन से काम करती हैं, डिवोशन के साथ काम करती हैं, इल्म दोस्त होते हैं उनके, बड़े बड़े गोल्स होते हैं, वक्त की पाबंद होती हैं, बिल्कुल एक काम करने के लिए उसका हक अदा करने वाले लोग, मामलों में वो अच्छे, सफाई में वो अच्छे। तो जो बात समझ आती है कि अगर आप अपने हालात बदलना चाहते हैं मुसलमानों के, तो हमें अपनी हालत बदलनी पड़ेगी। आज हमारी क्या हालत है, क्या हमारे अंदर मेहनत है, डेडिकेशन है, काम को बेहतरीन अंदाज से करते हैं या चल चलाओ करते हैं, क्या इल्म दोस्ती है, हमारे हदफ क्या है, हमारा काम क्या है, क्या हम अपने लिए नहीं जी रहे, क्या आज वाकई हम उम्मत के लिए जीने वाले हैं। याद रखिए, जो खुद को डिसिप्लिन नहीं कर सकता वो दुनिया को कैसे करेगा। आज हमारी उम्मत की शाम है, कितने साल से जो उम्मत का सूरज चमक रहा था इस दुनिया पे अब डूबा हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह सुबह होगी। आप जो इतने लोग कुरान पढ़ रहे हैं, ये एक नया सूरज बनकर, उम्मत का एक रोशन मुस्तकबिल बनकर जाएंगे। शर्त है कि अपनी नस्लों को साथ लेकर बैठे, उनको सोने के लिए मत छोड़िए। आज भी अगर लॉकडाउन में आप अपने बच्चे और बच्चियों को साथ लेकर नहीं बैठ सकी, तो माजरत के साथ फिर मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है कि आप जो सोचती हैं वो हो सके। आज भी आपके बच्चे नहीं मान रहे, ना उनको स्कूलों में जाना, ना उनको कुछ करना, तो फिर इसके अंदर कि आपको भी यकीन नहीं है। और आज हमारे गम क्या हैं? एक बच्चे का रिजल्ट खराब हो जाए, माँ का बीपी लो हो जाता है, बाल सफेद हो गए, कहती क्या करें, इन बच्चों का गम पड़ा पड़ा के बाल सफेद हो गए। और मैं बड़ी सेंसिटिव हूँ, याद रखिए आपकी मेरी ओवर सेंसिटिविटी अपनी जाती के साथ है। आज अगर आप मैं सेल्फ सेंटर्ड हैं तो उसका नुकसान क्या है? हम अपने बच्चों के लिए बहुत दर्दमंद, अपना घर रखने के लिए परफेक्शनिस्ट, एक बाल गिर जाए घर में हम बहू की शामत ले आने वालों में से, नौकरों की शामत आने वाली, हम दूसरों की नहीं अपनी फिक्र करते हैं। बेटी की शादी हुई, जरा ससुराल से जेवर कम आया, मैं गम पड़ गई, ये किधर बेटी चली गई। तो आज तो हम अपने गमों में खोए हुए लोग हैं, फिर उम्मत कब बनेंगे? जब हमें अपने गम सताते रहें तो ये बताइए कि उम्मत का गम फिर कैसे होगा और कौन उसको लगाएगा? आज हमारे भी बच्चे दुनिया की तालीम लेते हैं, लेकिन कितने हैं जो आपकी तरह जब कभी आप पढ़ते थे ये कहें कि हम डॉक्टर इसलिए बन रहे हैं कि इंसानियत की खिदमत करेंगे? हम लोग ये कहते थे, बिलीव मी, मैं भी ये कहती थी, अगर मैं डॉक्टर बन चुकी होती तो मैंने कहना था इंसानियत की खिदमत के लिए। आज आपके बच्चे कहते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो कहते हैं इतनी महंगी पढ़ाई ले रहे हैं और पता नहीं स्टडी लोन्स हमारे सर पे हैं, पहले इसको पढ़ेंगे फिर कमाएंगे, पैसे वसूल करते हैं। आज भी लोग रात दिन जॉब कर रहे हैं, शर्म नहीं आती हमें? रमजान के महीने में नमाजें छोड़कर हम सारी रात काम करके आकर सोए रहे, क्या करना है उस 10-20 हजार को? लेकिन कर रहे हैं, वो कहते हैं हमने अपने कर्जे उतारने हैं, और हर वक्त कर्जे चढ़ाते भी तो हैं। स्टडी लोन तो कब का उतर गया, अब तो गाड़ियां और फोन और ये कुछ चाहिए, अब तो घर लेना है क्योंकि शादी करनी है, लड़के को बुलाने दूसरे मुल्क में, क्या हो गया आज की उम्मत मुस्लिमा को? वो कहते हैं ना कि वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे जियां जाता रहा। हमारा मसला ये, हमें ये तक एहसास नहीं कि हम कुछ खो रहे हैं। आज हमारे क्या गोल्स हैं, हम किन चीजों को देखते हैं? आप देखिए कि दीन पढ़ भी लेते हैं ना, जैसे इस वक्त थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, फिर इंशाल्लाह ज्यादा भी डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसके बाद हमारे सवाल जवाब क्या होते हैं? अच्छा, नेल पॉलिश लगाकर नमाज हो जाती है? अच्छा, स्कार्फ पहनूं कि चादर पहनूं? अच्छा, फिर मैं उसमें मोती लगा सकती हूँ? अच्छा, फिर मैं उसका रंग बदल लूं, सुरख पहन लूं, सफेद पहन लूं? अच्छा, तरावियां 18 हैं कि 20 हैं कि 5 हैं? अच्छा, वितर सुबह पढ़ें शाम पढ़ें? और अच्छा, सजदा कैसे करते हैं? और सारी बातें पढ़ के कहते हैं मेरी फिक्र ठीक है, दूसरों की गलत है। फिक्री इख्तलाफात को हवा देने वाले, क्या हो गया उम्मत मुस्लिमा को? और अगर कोई क्लेमिटी आ जाए, मुल्क में गड़बड़ हो, कहते हैं हुक्मरान ही बुरे, क्या किया आज तक इन्होंने? अल्लाह के नबी कह गए आमालुकुम उमालुकुम, तुम्हारे आमाल तुम्हारे हुक्काम बनेंगे। कहाँ से आते हैं ये लीडर्स? आपके मेरे में से आते हैं। आप देखिए हर नबी के बारे में कुरान में क्या आता है, उनकी कौम में से एक नबी। हम लीडर्स बाहर से ढूंढते हैं, कोई आएगा, इम्पोर्टेड चीजें होती बड़ी अच्छी हैं, एक इम्पोर्टेड लीडर आएगा हमारे मुल्क देखिए तरक्की करेंगे, और अल्लाह ना करे किसी दिन ये सौदा कर भी ना आए हमारे बड़े कि भाई हमसे नहीं ये मुल्क चल रहा, तुम ले लो। क्या हम वाकई अपने इस मुल्क की दोबारा आजादी की कीमत देने के लिए तैयार है? जो अल्लाह के नाम पे लिए हुए मुल्क में इस्लाम और दीन न ला सके, रू न ला सके। आज हम हकीकत में खो गए। तस्बीह की गिरा खुलती है ना, तो मोती कोई पाँव में गिरता है, तो कोई किसी चूल्हे के नीचे जाता है, तो कोई बेड के नीचे जाता है। आज उम्मत का यही हाल हो चुका, सिर्फ डिस्कशंस, डिस्कशंस ओनली फॉर डिस्कशन, एंकर प्रोग्राम मसाइल, एक मसला उठाएंगे फिर दूसरे को बुलाएंगे, कहीं आलम है कहीं फलां है। आज हमारे पॉइंट ऑफ डिस्कशंस रह गए, आज इल्म नहीं है, हमारे पास सिर्फ सवाल जवाब होते हैं। कुरान खोलते क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू हो जाते हैं, कुरान को पढ़ने के लिए खुद को फारिग करना ये बहुत मुश्किल है। ये डिस्कस कीजिए कि फिकह हनफी ठीक थी कि फिकह शाफी ठीक थी। तो याद रखिए, अगर कौम में तब्दीली देखना चाहते हैं, नंबर एक खुद को डिसिप्लिन कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए, कामों को मैनेज कीजिए। नतीजा क्या होगा? बहुत सा वक्त निकलेगा आपके पास, एक्स्ट्रा टाइम जो जाया हो रहा है बेकारगियों में, 10 दफा बाजार जाते हैं, एक चीज भूली फिर चले गए, वक्त जाया करते हैं। आप लिखिए, बात कीजिए, क्या चाहिए आज, क्या चाहिए कल, क्या चाहिए परसों, क्या फिर जाएंगे चौथे दिन। अब जब आप डिसिप्लिन होंगे ना, तो आपके इस वक्त बहुत होगा, उस वक्त को लगा दीजिए, खपा दीजिए दीन के लिए। और कोई बात करे, कहते जमाना बड़ा बुरा आ गया, देखे हमारा वो दौर था, हमारी अम्मियों का ये दौर, अबुओं का वो दौर, तो याद रखिए हदीसे कुदसी है कि जमाने को बुरा ना कहो, अल्लाह ताला फरमाता है नदहर मैं बुरा हूँ, कहिए हम बदल गए, इन्नल्लाहा लायुगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। हम बदले में, हमारे अंदर तो बेसिक एथिक्स नहीं रहे दुनिया में जीने के, नेगेटिविटी से बात शुरू करते हैं। ये चांद देखा था, ये 2 दिन का लग रहा है, खा गए एक रोजा, اللہ اکبر کبیرہ، اتنے خوبصورت مہینے کا آغاز آپ نیگیٹیوٹی سے کرتے ہیں، اندیشوں سے کرتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں، پہلے تو سوچیے کہ چاہتے بھی ہیں کہ نہیں، کہ ہم بڑے مزے میں اپنے کمفرٹ زون میں جی رہے ہیں، کیا مزے میں، بس آج کیا بنے گا، ناشتہ کیا ہوگا، کھائیں گے کیا، بچوں کو ٹوسٹ بنا دوں، بچوں کو ملک شیک بنا دوں، ہمارے تو غم بھی چھوٹے، ہماری طرح ان کے تو غم اتنے بڑے تھے، وہ مائیں کیا بچے چھوڑ کر گئیں، کیا وہ بچے پال کر گئیں، ذرا دیکھیے تو صحیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے تربیت کی، وہ ماں اچھی تھی، اس کا غم یہ نہیں تھا کہ میں نے اپنے آپ کو کدھر لے کے جانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا، یعنی اگر دنیا میں پنپنا ہے نا تو میں آپ کو 9 پوائنٹس لکھاتی ہوں، دیکھیے گا آپ مسلمان ہیں کہ نہیں، لیکن آپ مسلمان بن جائیں گے اللہ آپ کو عروج دے گا. پہلی بات ہے جلوت اور خلوت میں صرف اللہ سے ڈرنا، یعنی تنہائی میں بھی اللہ کا ڈر آپ کو گناہوں سے روکے، اور محفلوں میں تو کبھی آپ حدوں کو پامال کر ہی نہیں سکتے، اپنے آپ سے سوال کیجئے واقعی ایسا ہے. دوسری بات عدل اور انصاف کی بات کرنی ہے، چاہے غصے میں ہوں چاہے رضامندی میں ہوں، یعنی کسی سے خوش ہوئے یا کسی سے ناراض ہوئے، بات سچی کرنی ہے. تیسری بات ہے میانہ روی پر قائم رہنا ہے، یعنی جو اللہ نے دیا ہے رضا بالقلیل، تھوڑا ہی دیا اللہ میں اسی پہ بڑی خوش ہوں. پھر اسی طرح چوتھی بات ہے اہل قرابت سے جڑو، اور ہم آج انہی سے زیادہ کٹتے ہیں جن سے اللہ نے جڑنے کا حکم دیا، دوستوں سے بڑا پیار، رشتہ داروں سے تو ایک دن نہ بنی ہماری. پھر اسی طرح اگلی بات آپ نے فرمائی، ان کو دو جو تمہیں محروم رکھیں، اور ہم کیا کہتے ہیں، لو انہوں نے نہیں دیا ہم کیوں دیں. پھر فرمایا ان کو معاف کر دو جو تم پہ ظلم کرتے ہیں، ہم اللہ کی بنا زندگی بھر نہ چھوڑیں. وہ آتے ہی ساس نے جو بات کہی تھی شادی کے دوسرے دن، وہ کہتے ہیں قبر تک جائے گی ساتھ ساتھ، کہتے رہتے ہیں اللہ معاف کرے امی جی کو، زبان کی بڑی تیز تھی، اللہ معاف کرے امی جی ذرا بڑی غصے والی تھی. بھائی آپ تو پہلے معاف کیجیے، آپ تو دلوں میں ایسے پھپھولوں کی طرح زخموں کو رکھتے ہیں اور اپنے زخم کھرچتے ہیں، پھر ان کو ٹھیک بھی نہیں ہونے دیتے. پھر آپ نے فرمایا کہ میری خاموشی تفکر والی ہو، میں جب خاموش بیٹھا ہوں نا تو میں غور کروں، یا تفکروں نا فی خلق سماواتی والا، ہم بیٹھے کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، یہ ساس میرے خلاف جادو تو نہیں کر رہی، یہ میرے میاں کو کیا کہہ رہی، یہ بہن کیا کر رہی ہے، یعنی پھر ہم اپنی نندوں اور ساسوں اور بہوؤں اور پتہ نہیں کس کس کے خلاف پلانس بناتے اور مکر کرتے ہیں. اللہ ہماری اصلاح کر دے. اور فرمایا میری گفتگو ذکر کی ہو، بات کروں ایسے لگے جیسے پھول جھڑتے ہیں، ہماری گفتگو جیسے ہوتی ہے اللہ کی پناہ ہم سب جانتے ہیں. اور پھر فرمایا میری نظر عبرت کی ہو. دیکھیے پیچھے سورۃ الاعراف سے لے کر اب تک کتنی دفعہ قوموں کے قصے پڑھیے، کیا ہم نے قوم لوط سے سبق لیا، قوم نوح سے سمجھ کر شرک چھوڑا، کیا ہم نے ہر قوم کے قصے میں سے کوئی ایک عمل کی بات لی، ناپ تول میں کمی تھی یا اللہ کی نشانیوں کا مذاق، تو اس کو چھوڑا؟ اور جب نہیں چھوڑیں گے تو پھر ان اللہ لا یغیر ما بانفسہم، اللہ نہیں بدلے گا، اللہ کے قانون آپ کے میرے لیے نہیں بدلیں گے. جیسے آپ دیکھیں سورج مشرق سے نکلتا ہے نا، آپ میں رات دن دعائیں کرتے رہیں یہ مغرب سے نہیں نکلے گا، اسی طرح دیز آر دا یونیورسل فیکٹس. کریں کیا، اس آیت کا درد بہت ہے دل میں، کیونکہ نفس کے فتنوں میں آج کے دور میں ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے، اپنے لیے جیو. ہاں جی ان بچوں کے لیے تو ہے، کھایا ان کے لیے، کمایا ان کے لیے. آج بھی پاکستان کی اگر آپ مثال دے دیں، صرف 33% آبادی اپنا نام پتہ لکھ سکتی ہے، لٹریسی ریٹ یہ ہے آپ کا، ان میں سے بھی اونلی 13% ہے جن کو صحیح لکھنا پڑھنا آتا ہے. آپ دیکھیے کہ ترقی یافتہ قومیں، بل گیٹ کا نام سنا ہوگا، ملینیرین ہے، اس نے ایک ٹرسٹ بنایا دنیا میں علم کام کرنے کے لیے. کیا میں آپ ایسی جگہوں پہ مال لگاتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس مال نہیں ہے، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں، ہم اپنا پیسہ پھر اپنے بچوں پر لگاتے ہیں، بیٹیوں کی شادیوں میں 50-50 تولے، بہوؤں کو بھی برے دل سے کچھ دے ہی دیتے ہیں، میک اپ 50,000 کا، جوڑا 4 لاکھ کا. یہ قومیں ہیں بدلنے والی. آپ دیکھیے کہ جن کے سروں پر صرف شادیاں سوار ہیں، منگنیاں سوار ہیں، مہندیاں سوار ہیں، عید کے جوڑے کہاں سے تیار ہونا، کیا ہے تھیم میرج، کیا ہے اور فلاں کیا، کیا وہ امت بن کے جیئیں گے؟ اللہ نہیں منع کرتا، لیکن شریعت کے دائروں میں رہیے، اسراف سے بچیے، لمٹس میں رہیے. اور ہر وقت باتیں، لوگ کیا کہتے ہیں، کہیں سے مل کر آئیں گے، دیکھا تھا صوفہ، دیکھا تھا کرسیاں، دیکھی تھی کپڑے، دیکھے تھے اس کے، یہ تو اتنا قیمتی، یہ تو برانڈ کا لگ رہا تھا، یہ نہیں نہیں یہ وہ. دوسری کہے گی نہیں بھائی ریپلیکا تھا، نہیں بھائی مجھے پتا. یہ ہیں ہماری ڈسکشنز، ہمیں تو یہ غم کھا گئے. وہ کسی نے کتنی اچھی بات کہی کہ گریٹ مائنڈس ڈسکس آئیڈیاز، ایوریج مائنڈس ڈسکس ایونٹس، اور اسمال مائنڈ ڈسکس پیپل. آپ اور میں اپنا گراف خود دیکھ سکتے ہیں، तो आपको पता चल जाएगा कि फॉल को राइज में कैसे बदलना है। और यकीन कीजिए, अगर अभी ना बदले, ये कोरोना के लॉकडाउन में ना बदले, तो मुझे तो फिक्र ये लग गई है कि बस इसके बाद कुछ नहीं होगा। अल्लाह ना करे कि अल्लाह की दीवी आज़ादियाँ छिन जाएं और दोबारा फिर कुर्बानियाँ और हिजरतें करनी पड़े। आप कहते क्या करें, हुक्मरान है, नाफिज ही नहीं करते इस्लाम। पहले आप अपने इस 5 से 6 फुट पर इस्लाम नाफिज कीजिए, अल्लाह फिर बाकियों के बारे में आपसे नहीं पूछेगा। और खुद से पूछिए चंद बातें, किन हालात में अपने बच्चों को छोड़कर जाऊंगी, मेरे बच्चे मेरे बाद क्या करेंगे। और जिस तरीके से आप बच्चों को सिखाएंगे, बच्चे आपके बाद आपके ही अकाउंट्स हैं, बस उसमें क्रेडिट वही डलेगा जो आप सिखा कर गए। तो अल्लाह ताला से इस दर्द के साथ दुआ कीजिए कि अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की बहार हमें दिखा और उसमें मेरी जान, मेरा माल, मेरा वक्त खपा दे। क्या करना है इस जिस्म को, कितने भी साथ जाएंगे, किसने आज तक मिस वर्ल्ड का लकब दिया। सारा माल लाकर पेश तो कीजिए, आप भी बनाइए एक ट्रस्ट इल्म के लिए। हम तो एक फ्लायर ना प्रिंट कराएं इस बात पे कि अब हमने क्यों करना है। हम तो फ्री में ना वो काम करें जो हमें करना है। हम कहते नहीं आएंगे लोग, नहीं घर से भी नहीं सुनेंगे, नहीं फुलां तो फुलां है। आपने क्या इस दौरे कुरान की दावत अपने हर जानने और हर सुनने और मानने वाले को एक दफा कम अज कम दी है? तो याद रखिए कि मोमिन तो वही है जो दूसरों के लिए वही पसंद करता है जो अपने लिए। और अब अल्लाह ताला उम्मीद और खौफ के बीच की चीजों में गरज चमक की बात सुनाते हैं। व युसब्बिहु रअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिह, यानी ये है वो आयत जिसके लिए शायद इस सूरत को सूरत रात कहा जाता है। गरज इसकी तस्बीह हो तारीफ करती है और फरिश्ते भी इसके खौफ से। और वही आसमान से बिजलियां गिराता है और जिस पर चाहता है इस पर डालता है। कुफार अल्लाह के बारे में लड़ झगड़ रहे हैं और अल्लाह ताला सख्त कुव्वत वाला है। यानी दुनिया में हो क्या रहा है, फरिश्ते इतनी आला मखलूक के बावजूद लरसते कांपते अल्लाह की तस्बीह करते हैं और हम गाफिल दिलों से हाथ में तस्बीहां पकड़ पकड़ कर साथ सुबहान अल्लाह भी कह रहे हैं और गिबते भी कर रहे हैं, आयत करीमे भी पढ़ते हैं और साथ जरा थोड़ी सी डिस्कशंस भी करते हैं। तो क्या मिलेगा हमें इस सारी तस्बीह से? फिर आयत 14 देखिएगा, एक शिरक ही सिंबल है। कबासितिन कफ्फैहि इलल माई लियब्लुगा फाहु, खुली हथेलियों से पानी चाहने वालों को पानी नहीं मिलेगा। मिसाल है मुशरिक की कि जो हकीकत में खुले हाथों से लेने वाला है लेकिन नहीं मिलेगा। तो फरमाए लहू दावतुल हक, इसी को पुकारना हक है। जो लोग औरों को इसके सिवा पुकारते हैं वो इनकी पुकार का कुछ भी जवाब नहीं देते, मगर जैसे कोई शख्स अपने दोनों हाथ पानी की तरफ फैलाए हुए हो कि इसके मुंह में पड़ जाए, हालांकि वो पानी इसके मुंह में पहुंचने वाला नहीं। इन मुनकरों की जितनी पुकार है बस सब गुमराही में है। अल्लाह ही के लिए है जमीन और आसमान की सब मखलूक, खुशी और ना खुशी से सजदा करती है और इनके साए भी सुबह शाम। क्या हम खुशी या ना खुशी से कैसे करते हैं पूछिए, तौन बैठी सुन रही हूँ या करहन, बोझ पड़ा हुआ है खत्म करें, पारा पूरा हो। मैंने नहीं इनको सुनना, ये बहुत लंबा पढ़ा रही हैं, मुझे कोई 2 घंटे से कम का दौरे कुरान दीजिए। जो काम कीजिए खुशी से कीजिए, दुनिया में चाहें तो ज्यादा मांगते हैं, कुछ फ्री भी मिल जाए, कुछ है बाय वन गेट वन फ्री। और दीन के नाम पे लीस्ट मिनिमम पे रहने वाले सिर्फ इसलिए कि दौरे कुरान करते हैं हर साल करना, ये सोच होगी तो याद रखिए सुन सुन कर सुन हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला में खुशी के साथ इबादत करने वाला बना दे और अल्लाह ताला के आगे झुकने वाला बना दे। सिर्फ उसको पुकारिए, सिर्फ उसके साथ मामला रखिए। अच्छा आप पूछिए कि आसमान और जमीन का परवरदिगार कौन है, कह दीजिए कि अल्लाह। कह दीजिए क्या तुम फिर भी इसके सिवा औरों को हमायती बना रहे हो जो खुद भी अपनी जान के भले बुरे का इख्तियार नहीं रखते। देखिए शिर्क की कोई गुंजाइश नहीं है इस कायनात में। कह दीजिए कि अंदर भी ना बराबर हो सकता है, या क्या अंधेरियां और रोशनी बराबर हो सकती हैं? क्या जिन्हें ये अल्लाह का शरीक ठहरा रहे हैं उन्होंने भी अल्लाह की तरह मखलूक पैदा की है कि इनकी नजर में पैदाइश मुश्तबे हो गई? यानी अल्लाह ने क्या बनाया और बाबा जी ने क्या बनाया? कह दीजिए कि सिर्फ अल्लाह ही तमाम चीजों का खालिक है, वो अकेला है और जबरदस्त गालिब है। अब आगे खूबसूरत आयत है जो हक और बातिल के फर्क को जाहिर करती है। आयत 17, कज़ालिका यद्रिबुल्लाहुल हक वल बातिल। आप और मैं जिस नफ्स से अम्मारा के फितने का शिकार है ना, याद रखिए जिस तरह बाहर की दुनिया में हक और बातिल की कश्मकश है ना, कुछ लोग अच्छी बातें कर रहे हैं, अच्छी फैला रहे हैं, कुछ बुरी, इसी तरह हमारे अंदर भी नफ्स अम्मारा और नफ्स लवामा की जंग है। और इसी चपकलश के अंदर आपने मैंने नफ्स के फितनों को दबाकर क्या करना है वो इस आयत से आपको बहुत ही खूबसूरत तरह से मिल सकता है। अनजल मिनस्समा ईमान फसालत औदियतुम बिकदरिहा, इसी ने आसमान से पानी बरसाया फिर अपनी अपनी वसत के मुताबिक नाले बह निकले, फिर पानी के रेले ने ऊपर चढ़ी झाग को उठा लिया और इस चीज में भी जिसको आग में डालकर तपाते हैं, जेवर या साजो सामान के लिए इसी तरह की झाग है। اس طرح اللہ تعالیٰ حق کو باطل کی مثال بیان فرماتا ہے، اب جھاگ تو ناکارہ ہو کر چلی جاتی ہے، لیکن وَمَّمَا يَنفَعُ النَّاسُ فَيَمْكُثْ. بس یہ ہائی لائٹ کیجیے جملہ، اس آیت کی تفسیر آپ کو لنک دیں گے انشاءاللہ سبیل الجنہ میں سے، یا کسی بھی تفسیر کا آپ خود سن کر دیکھیے گا کہ کیا واقعی قرآن کی یہ آیت کتنی دفعہ قرآن خانیوں میں پڑھی، کتنی دفعہ تراویوں میں پڑھی، کتنی دفعہ صبح کے قرآن میں پڑھی، لیکن اس کو سننے کے بعد کیا دل میں یہ تڑپ آئی کہ وَمَّمَا يَنفَعُ النَّاسُ فَيَمْكُثْ، یعنی جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہی زمین میں ٹھہری رہتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس طرح مثالیں بیان کرتے ہیں. آج بھی امام بخاری رحمہ اللہ کا نام کیوں معروف ہے؟ لوگوں کو نفع دے کر گئے. آج بھی دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں اور نیوٹن اور اسی طرح کے لوگوں کا نام کیوں باقی ہے؟ کچھ نفع دے گئے، ان کے پاس دنیا کی ترقی تھی وہ دے گئے. آج میرے اور آپ مسلمانوں کے پاس کیا کچھ ہے آپ میں اس کو خود دیکھ سکتے ہیں. کیا میں لوگوں کے نفع کیوں؟ ذرا سا دیکھیے آج ہم مسلمان ملکوں میں کیا بنتا ہے. کیا ٹیکنالوجی ہمارے ملکوں سے جا رہی ہے دنیا کو؟ گاڑیاں ہمارے ملکوں کی معروف ہیں. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ دنیا کے بڑے بڑے گیجٹ کہاں سے آتے ہیں. اصول سمجھ لیجئے اس آیت کو سمجھنے کے لیے کہ جو قوم دنیا میں دنیاوی ترقی کے عروج پہ بھی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دے گا. جب ہماری شام ہوئی، جو پیچھے ابھی ہم نے دکھ دیکھا، تو اس کے بعد ہم دنیا کے بھی نعرے. ہمارے ایک ملکوں میں کیا بنتا ہے؟ جوتیاں پرس، بہت ہی خوبصورت سی، بہت اچھی ہیں، ٹھیک ہے، بہت نائس ہے، لیکن ہم ٹیکنالوجی میں پیچھے ہو گئے. جو لوگ آج نفع دے رہے ہیں پھر وہ اپنی باتیں بھی منوائیں گے. مینوپلیز ہیں آج دنیا میں ملکوں کی، کیونکہ ان کے پاس ٹیکنالوجی، آپ کو بھاری قیمت میں انہی سے لینا پڑے گا. چاہے ہتھیار انہی کے خلاف چلنے ہیں لیکن آپ کو ان سے ہی لینے پڑیں گے، وہ ٹوٹے پھوٹے بھی دیں گے، آپ کو لینے پڑیں گے. تو نفع مند بنی ہے. اپنے بچوں کو یہ احساس دے کر دنیا سے جائیے کہ بیٹا تم نے نفع مند بننا ہے. سو سو کے اور کھا کھا کے بچے نفع مند نہیں بنیں گے. اس کے برعکس جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی بجاوری کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے اس کے حکم کی نافرمانی کی، اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ ہو اور اسی کے ساتھ ویسا ہی اور بھی ہو، تو وہ سب کچھ اپنے بدلے میں دے دیں. یہی ہیں جن کے لیے برا حساب ہے، جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو بہت بری جگہ ہے. آپ نے شاید نوٹ کیا کہ نہیں، سورت رات میں حساب کی بات بار بار آ رہی ہے، اچھے برے حساب کی. تو آج اس دنیا میں پاؤں پسار رہے ہیں نا، اتنے نہ کھول لیجئے کہ کل سمیٹ ہی نہ سکیں. کہیں تھوڑے دن کے لیے آئیں تو بہت سامان نہیں کھولتا انسان. اسی طرح اس دنیا میں بہت پاؤں نہ پساریے، بلکہ کیا کیجئے، اللہ کی طرف نظریں لگائیے. الذین استجابوا لربهم الحسنی، اللہ ہمیں اس گروہ میں شامل کر دے. پھر ایک سوال ہے، افم یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہوا اعمى. تقابل دیکھیے گا علم والے اور بغیر علم والے کا، یعنی کیا وہ شخص جو یہ علم رکھتا ہے، کیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا ہے وہ حق ہے؟ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہو. آپ جواب دیں کہ نہیں، برابر ہو سکتے، اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتے بھی نہیں. اسی طرح پھر جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور قول و اقرار کو توڑتے نہیں، اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں. رشتے ناطے جوڑیے، کنشپ، جو رشتے جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا. آج جو نفس کی شرارتیں ذہن میں آئیں نا، تو سب سے پہلے رشتے ہی ٹوٹے ہمارے، اور اس طرح سے ہم رشتے داروں سے دور ہٹے، جس کی وجہ سے زندگی کی برکت بھی گئی، دعائیں بھی قبول نہ ہوئیں، اور برابری کے ذوق میں بلکہ رشتوں سے آگے چلے گئے. یاد رکھیے کہ صلہ رحمی کی دو بڑی قسمیں ہوتی ہیں، ایک عام اور ایک خاص ہے. عام صلہ رحمی دین پر مبنی ہے، یعنی کسی صاحب ایمان کے ساتھ تعلق ہونا، بس اس کو باہمی محبت اور خیر خواہی اور عدل و انصاف اور اس کے حقوق کو بجا لانے کے ساتھ ملانا، یہ واجب ہے. خاص صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ کیا آپ ان تمام چیزوں کے ساتھ خرچ کو بڑھا دیں، ان کے حالات کی خبر گیری کیجئے، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کیجئے. اور بہترین صلہ رحمی یہ کہ اپنے رشتہ داروں کو شرک سے اور بدعت سے روکیے، ان کو علم سے جوڑیے. اگر ان میں جہل ہے تو ان کو علم دیجئے، اگر غربت ہے تو مال دیجئے، اگر بیچارے کسی دکھ میں تو جا کر ان کو بہترین طریقے سے تسلی دیجیے، اور اگر بیمار ہیں تو عیادت کیجیے. تو رشتے جوڑیے. پچھلا پورا سال کا دور قرآن اس تھیم پہ تھا. اللہ کرے کہ ہمارے رشتے دار ہم سے راضی ہو چکے ہوں، کیونکہ یہ سب سے بڑا عمل ہے. اللہ نے اپنے رحم کے ساتھ اس کو جوڑا، عرش کے ساتھ صلہ رحمی لٹکی ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق دے. اس پہ تو پوری الگ سے بات کرنے کی ضرورت ہے. آج جو ہماری امت کا اپنے رشتے داروں سے حال ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اس کو. اور وہ اپنے رب کی رضا مندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں. اے اللہ، یہ جتنی صفات آ رہی ہیں ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے. और जो कुछ हमने इन्हें दे रखा है इसे छुपे खुले खर्च करते हैं और बुराई को भी भलाई से टालते हैं, इन ही के लिए आकिबत का घर है। ऐ अल्लाह हमें वहाँ का घर देना। उलाइक लहुम उकबतदार, कैसा होगा वो, जरा सी अपने आखरत के घर को देख लीजिए। चंद झलकियाँ। जन्नात अदनी यदखुलूनहा व मन सलख मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रियातिहिम, हमेशा रहने के बागात जहाँ ये खुद जाएंगे और इनके बाप दादों और बीवी और औलादों में से भी जो नेकुकार होंगे। दुआ कर लीजिए अल्लाह सारा खानदान साथ हो, किसी एक की भी कमी ना देना। इनके पास फरिश्ते हर हर दरवाजे से आएंगे, कहेंगे तुम पर सलामती हो, सब्र के बदले क्या ही अच्छा बदला है इस तारे आखरत का। थोड़े साल दुनिया का सब्र किया, नफ्स की टेम्पटेशन को रोका, नफ्स अम्मारा को दबाया, चंद दिन का सब्र नमाज रोजे और इबादात की सूरत में, और क्या किया। तुम्हें अल्लाह ने आज जो नेमतें दी उसकी वजह क्या थी कि तुमने वो किया जो अल्लाह ने कहा। लेकिन दूसरा भी रुख देख लो तस्वीर का। और जो लोग अल्लाह के अहद को इसकी मजबूती के बाद तोड़ देते हैं और जिन चीजों को जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है इन्हें तोड़ते हैं और जमीन में फसाद फैलाते हैं, इनके लिए लानते हैं और इनके लिए बुरा घर है। अल्लाह ताला जिसकी रोजी चाहता है बढ़ाता है और घटाता है। ये तो दुनिया की जिंदगी में मस्त हो गए, हालांकि दुनिया आखरत के मुकाबले में नहायत हकीर पूंजी है। अब इस पे मैं ना बोलूं बल्कि खामोश रहूं और आप गौर करें, क्या आप हकीर पूंजी के पीछे तो नहीं अपनी जिंदगियां जाया कर रहे। वमल हयात दुनिया फिल आखिरत इल्ला मता, यानी आखरत के अकाउंट में जाकर देखेंगे तो कुछ भी नहीं निकलेगा क्योंकि सब तो दुनिया के अकाउंट में डाला है। व यकूलुल लजीना कफरू, काफिर कहते हैं इस पर कोई निशानी यानी मोजज़ा क्यों नहीं उतारा गया। जवाब दीजिए, अल्लाह ताला जिसे गुमराह करना चाहे कर देता है और जो इसकी तरफ झुके इसे रास्ता दिखा देता है, यानी अल्लाह ताला के हाथ में है सब कुछ। जो लोग ईमान लाए इनके दिल अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान हासिल करते हैं। हाईलाइट कीजिए मशहूर आयत है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। आज लोग परेशान हैं, क्या करें, किसी ने कहा शराब ढूंढो, यानी कहते ना कि गैर मुस्लिम को जब गम आता है तो लीकर शॉप की तरफ जाता है और ईमान वाले को कोई गम आता है तो वो जिक्र शॉप की तरफ जाता है, और जिक्र शॉप से दीन के मदरसे हैं। तो अल्लाह ताला दिलों को इत्मीनान देना चाहता है, आप उसको किताब दीजिए, नमाज अच्छी पढ़िए, देखिए होगा क्या, दिल मुतमईन होगा। जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक काम भी किए इनके लिए खुशहाली और बेहतरीन ठिकाना है। कितनी लाइट सुरा है ना, बार बार खूबसूरतियों के साथ आपको मुझे रग़बत दिलाई जा रही है कि जहन्नुम का ईंधन ना बन जाना, जन्नत की तरफ चलना है। तो क्या सीखा, उलुल अलबाब का नफ्से लवामा से नफ्से मुतमईना बनने का सफर, क्योंकि जिसका दिल इत्मीनान में आ गया वो तो मुतमईन हो गया। दुनिया घबराए, दुनिया परेशान, दुनिया वावेले मचाए, वो कहता मैं मुतमईन हूँ, इन्ना जन्नती माईश, मेरी तो जन्नत मेरे साथ है। तो क्या करें, यानी आज चूंकि नफ्स के साथ जंग कर रहे हैं ना, तो देखिए नफ्से लवामा मलामत उठती है अंदर से, तुमने बुरा किया है, गलत किया है। ये सालेहीन का नफ्स होता है यानी नेकियां करने वाले। मुजाहिदे और रियाजत की जरूरत है इस नफ्स को पाने के लिए, यकीन और मुहासबे की जरूरत है। इसके बाद फिर नफ्से मुतमईना में इंसान ढलता है। आम तौर पे अल्लाह के हुक्म से नफ्से मुतमईना होता है अंबिया कराम का, रसूलों का, लेकिन कुछ लोग विलायत के दर्जे पे पहुंच जाते हैं जब वो नफ्से अम्मारा पे पांव रखें, नफ्से लवामा की छोटी सी विस्पर को भी सुने और अपने आप को बदलें, तो इंशाल्लाह या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना इरजी इला रब्बिकि राधियतम मर्दिया। सूरत फजर की आखिरी आयतों में हम सीखेंगे इंशाल्लाह। जब दुनिया से ऐसा बंदा जाएगा ना, तो अल्लाह चाहे तो लोगों को भी सुनवा दे, और अल्लाह हमारी मौत ऐसी हो कि लोगों को भी सुनवा दे कि एक इत्मीनान वाली रूह इस दुनिया से जा रही है। जितनी जिंदगी में जिक्र होगा, अल्लाह की याद होगी, अल्लाह की किताब होगी, अल्लाह का दीन होगा, उम्मीद कीजिए कि मौत भी उतनी ही खूबसूरत होगी। नफ्से मुतमईना बनना आपका मेरा गोल है इंशाल्लाह। कौन होते हैं वो लोग, हर हाल में मुतमईन यानी नेकियों पे कायम रहने, वो नेकी नहीं छोड़ते चाहे वो लॉकडाउन में हो या घर से बाहर हो, हर किस्म के गुनाह से दूर होते हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानी पर मुश्तमिल हर फेल से बेजार होते हैं, इबादत में लज्जत महसूस करते हैं और इतात इलाही और जिक्र अल्लाह से खुशी और इत्मीनान पाने वाले होते हैं। अल्लाह ताला आपको मुझे नफ्से मुतमईना बना दे। असल जिंदगी तो उनकी है, बाकी तो सिर्फ बेगार का जी रहे हैं। तो नफ्से मुतमईना को पाने के लिए तीन किस्म के आमाल की जरूरत होती है। आइए जरा एक एक देखें। यकीन कीजिए कि ये जो इस वक्त आप पढ़ रहे हैं ना, ये कम अज कम 10 दिन में ना पढ़ाया जाए, जो सिर्फ हम इसे एक पारे में कोशिश करते हैं। और ये हमारा पूरा कोर्स है तज़किया नफ्स का, उसको कूजे में बंद किया है कि शायद ये दौरे कुरान आपके मेरे दिल की सलाह बना दे। तो आइए देखिए कि तीन किस्म के अमाल कौन से हैं जिनको करने के बाद इंसान नफ्से मुतमईना बनता है। सबसे पहले अमाल है दिल के अमाल, एक्शंस ऑफ हार्ट। नंबर एक, तौहीद, इखलास व इस्तकामत, कुरान और कायनात पे तदब्बुर, इताअत, रिजा और उम्मीद, और अल्लाह का खौफ। ये 6 अमल अपने दिल से करा लीजिए, 1/3 ऑफ हार्ट विल बी नफ्से मुतमईना। सेकेंड है आज़ा के अमाल, लिम्स, ऑर्गन्स। नंबर एक, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इन्फाक, पाक दामनी और तहारत। ये आमाल कर लीजिए तो आप 2/3 ऑफ नफ्से मुतमईना बनेंगे। इसके बगैर आप मुतमईन नहीं हो सकते, जो मर्जी जाकर साइकाट्रिस्टों से बैठकर दुख सुख कर लीजिए। और फिर तीसरी किस्म के अमाल हैं जुबान के अमाल, डीड्स ऑफ दी टंग। नंबर एक, जिक्र, दुआ, इस्तेआनत यानी मदद सिर्फ अल्लाह से मांगनी है, शुक्र और हम्द, इंजार, बिशारत, वाज और दावत। ये 7 काम अपनी जुबान से करा लीजिए। उम्मीद है कि इंशाल्लाह या तुहन नफ्सुल मुतमईना की पुकार आप तो सुन ही लेंगे, दूसरे ना भी सुने तो। नफ्स से जिहाद करने वाला मुजाहिद है। कैसे? सिलसिला तो सहीहा की रिवायत 270, फुजाला बिन उबैद से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया, क्या मैं तुम्हें मोमिन के बारे में ना बताऊं? ये अंदाज कितना प्यारा है, जिसको कहते हैं ना अटेंशन सीकर। एकदम बात बता दें, अगला सोया और आप बात करके चले गए, नहीं सीधे होके बैठे फिर सुने, ये अंदाज है, जिससे लोगों के अम्वाल और जाने महफूज रहे। खुद से पूछिए, लोग मुझसे महफूज हैं? क्योंकि मोमिन के भी 3 दर्जे हैं, उन्हीं में से एक है। और मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। और मुजाहिद वो है जो अल्लाह की इताअत में अपने नफ्स से जिहाद करता है। और मुहाजिर वो है जो खताएं और गुनाह छोड़ दे। अल्लाह हमें ऐसा मुहाजिर बना दे, और अल्लाह ताला हमारी इसलाह फरमा दे, और अल्लाह हमें वो जन्नतें दें जिसमें तूबा लहुम व हुस्नु मआब। आगे फरमाए, कजाली कर सल ना कफी उम्मा, इसी तरह हमने आपको इस उम्मत में भेजा जिससे पहले बहुत सी उम्मतें गुजर चुकी हैं। क्या आप इन्हें हमारी तरफ से जो वही आप पर उतरी है पढ़कर सुनाइए? ये अल्लाह रहमान के मुनकिर हैं। आप कह दीजिए कि मेरा पालने वाला तो वही है, इसके सिवा दर हकीकत कोई भी लायक इबादत नहीं, इसी के ऊपर मेरा भरोसा है और इसी की जानिब मेरा रजू है। अगर बिलफर्ज कुरान मुराद आसमानी किताब के जरिए पहाड़ चला दिए जाते, या जमीन टुकड़े टुकड़े कर दी जाती, या मुर्दों से बातें करा दी जाती, फिर भी ये ईमान न लाते। बात यह है कि सब काम अल्लाह के हाथ में है, तो क्या ईमान वालों को इस बात पर दिल जमाई नहीं कि अगर अल्लाह तला चाहे तो तमाम लोगों को हिदायत दे दे? आप और मैं वो कुरान पढ़ रहे हैं जिसको अगर पढ़ के भूखा दे तो पहाड़ चलने लग जाए, जमीन टुकड़े टुकड़े हो जाए, मुर्दे जिंदा हो जाए। अल्लाह करे हमारे मुर्दा दिल जिंदा इस दफा हो ही जाए। अल्लाह हमें अपनी फिक्र लगा दे, अपना रोना लगा दे, अपना गम लगा दे। कुफार को तो इनके कुफर के बदले हमेशा कोई ना कोई सजा पहुंचती रहेगी, या इनके मकानों के करीब नाजिल होती रहेगी, तब वादे इलाही आ पहुंचे। यकीनन अल्लाह तआला वादा खिलाफी नहीं करता। आज तो ऐसे लगता है कुफार के साथ मुसलमानों के ऊपर भी अल्लाह का ये कानून लागू हो गया, शायद इसलिए भी कि अमाल भी एक ही जैसे हो गए। तो अल्लाह हमें गैरों से मुख्तलिफ अमाल करने वाला बना, और हमें अपने उन अजाबों से महफूज रख जिसमें तो इंसानियत को शिकार कर दे। यकीनन आपसे पहले के पैगंबरों का मजाक उड़ाया गया था, और मैंने भी काफिरों को ढील दी थी, फिर इनको पकड़ लिया, बस मेरा अजाब कैसा रहा? खात्मे सूरत की तरफ चल रहे हैं तो वार्निंग का स्टाइल है। क्या वो अल्लाह जो निगेबानी करने वाला है हर शख्स की इसके किए हुए अमल पर, यानी अल्लाह ताला मेरे आपके हर एक के अमल को देख रहा है, अल्लाह सुब्हान तआला इज वॉचिंग अस। इन लोगों ने अल्लाह के शरीक ठहराए हैं, कह दीजिए जरा इनके नाम तो लो, क्या तुम अल्लाह को वो बातें बताते हो जो वो जमीन में है जानता ही नहीं, या सिर्फ ऊपरी ऊपरी बातें बना रहे हो? बात असल यह है कि कुफर करने वालों के लिए इनके मकर सजा दिए गए हैं, और वो सही राह से रोक दिए गए हैं, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे इसको कोई राह दिखाने वाला नहीं। अल्लाह हमें गुमराह ना करना। वमन युद्लिलिल्लाहु फमा लहू मिन हाद। इनके लिए दुनिया की जिंदगी में अजाब है और आखरत का अजाब तो बहुत ही सख्त है। इन्हें अल्लाह के गजब से बचाने वाला कोई भी नहीं। इस जन्नत की सिफत जिसका वादा परहेजगारों को दिया गया है यह है कि इसके नीचे नहरें बह रही हैं, इसका मेवा हमेश की वाला है, इसका साया भी। ये है इंजाम परहेजगारों का, और काफिरों का इंजाम दोजख है। ए अल्लाह वहां एक लम्हे भर के लिए न डालना। जिन्हें हमने किताब दी वो तो जो कुछ आप पर उतारा जाता है इससे खुश होते हैं, और दूसरे फिर के इसकी बाज बातों के मुनकर हैं। ये भी एक बहुत बड़ी हकीकत है। आप सुन रहे हैं ना, खुश हो रहे हैं। कुछ को हो सकता है इस वक्त गुस्सा भी आ रहा हो, तो याद रखिएगा जिस दिल से इस किताब की तरफ आएंगे आपके दिल की कैफियत बिल्कुल वैसी हो जाएगी। हर एक कुरान को फैलता फूलता देकर खुश नहीं होता, हर एक के दिल में ये तड़प नहीं होती कि कोई भी कर दे दीन का काम, चलो हमारे नाम से नहीं कर रहा, काम तो कर रहा है ना। हम तो उस वक्त फिरकों और मसलकों और जमातों में आते हैं, बल्कि लेग पुलिंग करने वाले बन जाते हैं। आप ऐलान कर दीजिए कि मुझे तो सिर्फ यही हुक्म दिया गया कि मैं अल्लाह की इबादत करूं, इसके साथ शरीक ना करूं, मैं इसी की तरफ बुला रहा हूं और इसी की तरफ मेरा लौटना है। अल्लाह हमें भी इसी काम की तौफीक दे। इस तरह हमने इस कुरान को अरबी जुबान का फरमान उतारा है। अगर आपने इनकी ख्वाहिशों की पैरवी कर ली इसके बाद क्या आपके पास इल्म आ चुका? नोट कीजिए हमारी बातें, हम तालिब इल्म है ना। तब इल्म आने के बाद क्या करना है? उनकी ख्वाहिशों की पैरवी नहीं करनी। अगर हो गई या जान के कर ली तो अल्लाह के अजाबों से आपको कोई हिमायती मिलेगा और ना बचाने वाला। हम आपसे पहले भी बहुत से रसूल भेज चुके हैं और हमने इन सब को बीवी बच्चों वाला बनाया था। किसी रसूल से नहीं हो सकता कि कोई निशानी बगैर अल्लाह ताला की इजाजत के ले आए। हर मुकर्ररा वादे की एक लिखत है। सुभान अल्लाह। तो इन्हीं बीवी बच्चों और शोहरों के साथ दीन लेना। ये नहीं हो सकता कि ये सब चीजें अल्लाह ना करे खत्म हो तो फिर हम अल्लाह वाले बने। बस इनको साथ लेकर चलिए, काम आसान होगा। पढ़ें तो साथ पढ़ें, पढ़ाएं तो साथ पढ़ाएं, और घर में काम करें तो साथ करें, किचन में जाएं तो साथ, सफाई करें तो साथ। अल्लाह हमारे घरों को ये होम स्वीट होम कर दे। और तकदीर की बात है, सूरत के आखिर में देखिएगा अल्लाह ताला जो चाहे मिटा दे और जो चाहे साबित रखे, लोहे महफूज उसी के पास है। ईमान बिल कदर, इस पे मजीद सीखिए, क्योंकि इसके बगैर अल्लाह का हक बंदा दे नहीं पाता। इनसे किए हुए वादों में से अगर हम आपको दिखा दें, यानी कोई वादा जो हमने आपसे या किसी से किया है वो आपको दिखा दें, या हम आपको फौत कर लें, तो आप पर तो सिर्फ पहुंचा देना है, हिसाब तो हमारे ही जिम्मे है। मक्का वालों की जो आपसे बातचीत थी उसकी तरफ इशारा है। क्या वो नहीं देखते कि हम जमीन को इसके किनारों से घटाते चले आ रहे हैं? अल्लाह हुक्म करता है और कोई इसके हुक्म को पीछे डालने वाला नहीं, वो जल्द हिसाब लेने वाला है। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। इनसे पहले लोगों ने भी अपनी मक्कारी में कमी ना की थी, लेकिन तमाम तदबीरें अल्लाह ही की हैं। जो शख्स जो कुछ कर रहा है अल्लाह के इल्म में है। काफिरों को भी मालूम हो जाएगा इस जहान की जजा किसके लिए है। सारी तरक्की हाथ में और अल्लाह की पकड़ सामने। ये काफिर कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल नहीं। आप जवाब दीजिए कि मुझ में और तुम में अल्लाह गवाही देने वाला काफी है, और वो जिसके पास किताब का इल्म है। इसको भी नोट कीजिए, अल्लाह की गवाही को अहले किताब यानी किताब के इल्म वाले की गवाही के साथ जोड़ दिया। इल्म की शान है। तो क्या देखा, 27 से 43, दिलों को इत्मीनान सिर्फ अल्लाह की याद में मिलता है। अल्लाह दिलों को मुतमईन कर दे, जो बेचैन है उनको चैन दे दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई की गई इन आयात में हक के मुखालिफिन का बुरा अंजाम बताया गया। जन्नत मुत्तकियों के लिए है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुशरिकीन के दरमियान की कशमकश का जिक्र था, और आखिर में फिर मुखालिफिन हक के लिए धमकियां थी। तो क्या सीखा, जरा सा देखिएगा सूरत रात को एक स्ट्रेच में फितना नफ्स की रोशनी में। आयत 11 में देखा, वही बचेगा जो इंसानियत को नफा देगा। इस राह की अहम रुकावट इंसान का अपना नफ्स है। खुद से सवाल तो करें, कभी आज दुनिया से जाऊं कितनों को फर्क पड़ेगा? मेरे पीछे रोने वाले कितने होंगे, मुझे याद करने वाले कितने होंगे, और मुझे दुआएं देने वाले कितने होंगे? बस जवाब मिल गया आपको। आज से उठ जाइए, लोगों के लिए नफे के बनिए, लेना छोड़िए, देना शुरू करें, फिर देखिए अल्लाह आपको कैसे आगे लेकर आता है। फिर इसी तरह इसी आयत में देखा कि उम्मत मुस्लिमा के जवाल का सबब नफसानी ख्वाहिशात है। आज असल इस नफ्स पे पांव रख लेना। किसी का बड़ा अच्छा जुमला लगा, किसी ने पूछा कि जन्नत कितनी दूर है? कहा 2 कदम। कहा अच्छा, इतनी करीब है, कैसे? कहा कि एक कदम अपने नफ्स पे रखो तो दूसरा कदम तुम्हारे जन्नत में होंगे। अल्लाह अकबर। खुफ्फतिल जन्नत बिल मकारिह कहा गया इस बात को हदीस में कि अल्लाह ने जन्नत को नफ्स पे बोझ पड़ने वाली मकरूह समझी जाने वाली चीज़ों से घेर दिया है। तो आज तो हमें अपनी नफसानी ख्वाहिशात पे इंशाल्लाह बंद बांधना ही है। फिर इसी तरह आयत 19 में देखा उलुल अलबाब अक्ल इस्तेमाल करने वाले कौन है, नफ्स और शैतान के मुकाबले में अक्ल और वही इलाही की बात मानने वाले होते हैं। और आयत 25 में सीखा कि नफ्स अमारा की बात मानने वालों के लिए सुउद्दार। और आयत 28 नफ्स मुतमईना को ताकतवर बनाने वालों के दिलों को ही अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान और सुकून मिलता है। हर एक को नहीं मिलता ये भी बता दूं, कुरान और इल्म की महफिल में सारे मुतमईन नहीं होते, कई तो घबरा के बंद कर देते हैं, छोड़ो छोड़ो डिप्रेशन हो रहा है, हम तो फिर जहन्नमी है नाउसुबिल्ला। तो अल्लाह करे कि इस महफिल में हमारा दिल लग जाए। तो सूरत पूरी हुई है रात और सूरत इब्राहिम शुरू होती है, अम्बिया कराम के नाम पर शुरू होने वाली एक और खूबसूरत सूरत, और नाम भी कितना प्यारा और किरदार भी कितना प्यारा। और इसमें आप देखेंगे दुआएं भी कितनी प्यारी मांग रहे हैं, इब्राहिम की दुआओं से भरी हुई सूरत है। तरतीब के एतबार से 14 नंबर की सूरत और आयात हैं 52। इस दुआ से शुरू करते हैं कि अल्लाह हमारे अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा ईमान और इताअत भर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा हरूफ मुकत्तात, यानी बिल्कुल वही अंदाज जो मक्की सूरतों का एक खूबसूरत सा अंदाज होता है कि जिसमें अलर्ट कॉल दी जा रही है, अटेंशन प्लीज, तवज्जो कीजिए प्लीज। यानी जितना ज्यादा आप इन चीजों पे तवज्जो देंगे उतनी ज्यादा आपको अपने लिए अमल की गाइडलाइन मिलेगी। किताबुन अंजलनाहु इलैक लितुखरिजन्नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर इलन नूरी बेजनी रब्बिहिम इला सिरातिल अजीजिल हमीद। बड़ा खूबसूरत अंदाज है, क्या देखने वाले हैं। पहली 8 आयतों का जरा खुलासा पहले ही ले लीजिए। नज़ूले कुरान का मकसद अंधेरों से रोशनियों की तरफ ले आओ लोगों को। कुफार कौन है, अल्लज़ीना यस्तहिब्बून अल हयात दुनिया लल आखिरा, यानी जो आखिरत के मुकाबले में दुनिया को लेते हैं। इसी तरह तारीख इलाही के सबक आमोज वाकयात सुनकर नसीहत हासिल करना देखेंगे। और तबलीग के अव्वलीन मुखातिब हम जुबान लोग, आपको जो जुबान आती है उस जुबान में तबलीग करना शुरू कर दें, या आपका फर्ज बनता है और उस जुबान सिखाने वालों का हक बनता है आपके ऊपर। इसी तरह हम सीखेंगे कि नशुक्री से नेमतें छिनती हैं। आइए देखिए शुक्र में डूबी हुई सूरत है ये। मुझे तो ये ऐसे लगता है कि सूरत फातिहा दोनों साथ रख दी जाए तो बिल्कुल एक ही चीज लगे। अलिफ लाम रा किताबुन अंजलना हुई लाइक, ये आलीशान किताब हमने आपकी तरफ उतारी है कि आप लोगों को अंधेरों से उजाले की तरफ लाएं। दुआ कीजिए। ये है नूरुल कुरान। आपको तक ये नाम भी अल्लाह ने कैसे चूज करवाया था, जो मकसद होता है ना वो सामने आता है। आप कोई भी नाम देखें वो आपके जहन की अकासी होगा। तो कुरान का नूर घर घर में, आज जरूरत भी इसी की है। अंधेरों से लड़ने का क्या फायदा, बातें करने का क्या फायदा, आप में से हर एक चिराग बन जाए और लाइट लेते जाइए और आगे देते जाइए। इंशाल्लाह अंधेरे दूर होंगे, घरों के भी, खानदानों के भी, मुआशरों के भी। कहाँ से आया, इनके परवरदिगार के हुक्म से, जबरदस्त और तारीफों वाले अल्लाह की तरफ से। यानी अल्लाह को तुमसे अपनी तारीफें नहीं करवानी क्योंकि उसकी तारीफें तो हो रही हैं। जिस अल्लाह का है जो कुछ आसमान और जमीन में है, और काफिरों के लिए तो सख्त अजाब की खराबी है। तो क्या पता चला कि अल्लाह ताला को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अब अगली आयतों में देखिएगा 3 और 4 में जो बातें हैं वो क्या हैं। बाहर की दुनिया में हक और बातिल के बीच में झगड़ा है। एक तरफ दीन वाले दीन फैला रहे हैं और दूसरी तरफ शर वाले शर फैला रहे हैं, यानी नफ्स की शरारतों का कुछ शिकार है और कुछ उसका मुकाबला कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह अंदर की दुनिया में नफ्स अम्मारा और नफ्स लवामा में कशमकश है। जो जीत गया वो आपका नसीब है। अगर नफ्स लवामा जीतेगा तो आपको पुरसकून नींद आएगी और मौत भी प्यारी होगी, और इसके उलट हुआ तो क्या होगा। अब इसको जरा अगली आयतों की रोशनी में सुनिएगा। हुब्बे दुनिया को दिल से निकालने की खूबसूरत आयतें हैं। अल्लज़ीना यस्तहिब्बून अल्हयात अद्दुनिया अल आखिरा, जो आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी को पसंद रखते हैं और अल्लाह की राह से रोकते हैं और इसमें टेढ़ापन पैदा करते हैं। इतनी बुरी बुरी आदतें इन लोगों की, यही लोग परले दर्जे की गुमराही में हैं। हमने हर हर नबी को इनकी कौमी जुबान में ही भेजा है, क्या पता चला कि मदर लैंग्वेज या मदर टंग में ही बात में तासीर होती है, ताकि इनके सामने वजाहत से बयान कर दे। अब अल्लाह जिसे चाहे गुमराह कर दे और जिसे चाहे राह दिखा दे, वो गलबे और हिकमत वाला है। याद रखो जबकि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियां देकर भेजा कि तू अपनी कौम को अंधेरों से रोशनी में निकाल, نوٹ کریں، یہ ہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جانے والی صورتیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلا. بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر شکر کرنے والے کے لیے. اے اللہ ہمیں صابر بھی بنا اور شاکر بھی بنا. یاد رکھے صبر اور شکر سی سو کی طرح ہوتے ہیں، جتنا صبر بڑھے گا اتنا شکر بڑھے گا، شکر بڑھے گا تو صبر بھی بڑھے گا. جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے وہ احسانات یاد کیجئے جو اس نے تم پر کیے ہیں، جبکہ اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بڑے دکھ پہنچاتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بہت بڑی آزمائش تھی. ایک اچھے لیڈر ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، قوم کا مورائل بلند کیا جا رہا ہے، اور آج ہمیں ایسے ہی لیڈرس کی ضرورت ہے. آیت 7 اور 8 لکھیے، نفس کی ناشکری اور ناشکری سے نعمتیں چھن جاتی ہیں. بہت ہی پیاری آیتیں ہیں، فیمس آیتیں ہیں، اس کو یاد کر لیجئے، اور یاد کریں گے تو پھر یاد رہیں گی ہر اس موقع پہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نعمت دے گا تو کیا شکر کرنا ہے. اور کہاں آئی ہے؟ بنی اسرائیل کے تذکرے میں آئی، اس کی خاص وجہ، لیکن اس وقت ہم صرف اپنے لیے سنیں گے. وَاسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. یونیورسل ٹروتھ ہے کہ شکر گزاری سے نعمتیں بڑھتی ہیں اور نہ شکری سے گھٹتی ہیں. اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم نہ شکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے. دیکھیے، آپ کسی کو کھانا بنا کر بھیجیں اور تھوڑی دیر بعد فون آئے، بہت اچھا تھا، بہت انجوائے کیا، اگلی دفعہ آپ کہیں گے اچھا چلو میں اب تمہارے لیے ہمیشہ کچھ حصہ ڈال دوں گی. اس کے برعکس آپ کسی کو بھیجیں اور اگلے دن دیکھیں تو ان کی بن میں پڑا ہوا ہے، کیا ہوا؟ نہیں، ہم نہیں کھاتے، بچے نہیں کھاتے کسی کا، دوبارہ بھیجیں گے. بس یہ ہے لائن، شکر تم لذیذ انا کو. انسان بھی وہ چیزیں روک لیتے ہیں جو ہم ان کی پسند نہ کریں، اللہ تو پھر اللہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم سب اور وہ زمین کے تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی نہ شکری کریں تو بھی اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے، اس کو نہیں چاہیے، تمہیں خود فائدہ اپنے شکر کا. کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں، یعنی قوم نوح کی اور عاد اور ثمود کی اور ان کے بعد والوں کی؟ کون سے؟ جنہیں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا. ان کے پاس ان کے رسول معجزے لائے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لیے. حیرت ہی، کیا باتیں کر رہے ہو؟ یا منہ چھپا لیے کہ ہم نے تمہاری بات نہ سننی نہ تمہیں دیکھنا، اور صاف کہہ دیا جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہم اس کے منکر ہیں. بتائیے ایسے لوگوں کو ہدایت اللہ کیوں دے پھر؟ اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، ہمیں تو اس میں بڑا بھاری شبہ ہے. ڈاؤٹس کریٹ کیے اللہ کے نبیوں کی سچی دعوت کے مقابلے میں. ان کے رسولوں نے کہا کیا حق تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے؟ جو آسمان و زمین کا بنانے والا، وہ تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے تمام گناہ معاف فرما دے اور ایک مقرر وقت تک تمہیں مہلت عطا فرمائے. انہوں نے کہا تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو. دیکھیے ہر دور کا یہی مسئلہ ہے کہ نبی انسان ہے، بشر ہے، نور ہے، کیا ان بحثوں میں نہ پڑو بلکہ عمل کرو. انہوں نے کہا تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روک دو. دیکھیے وہ یہ اعتراض برائے اعتراض، جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے تھے. اچھا تمہارے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کرو. ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا، یہاں سیکھے گا کیسے لوگوں کے ریئیکشن کو مینج کرنا ہے. کیا کہا؟ یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں. اب اس جملے کو کوئی کہاں لے جائے بتائیے کہ نبی انسان ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا فضل کرتا، یعنی ان کو چنتا تھا وحی کے لیے، نبوت کے لیے. اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں لا دکھائیں، اور ایمانداروں کو صرف اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. کتنا خوبصورت انداز ہے، جس کو کہتے ہیں ریپنگ اپ سٹائل، کہ بحثوں میں نہ پڑو، جھگڑوں میں نہ پڑو، بس کام کرو. آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اسی نے ہمیں راہیں سجھا دیں؟ واللہ ہی جو اذیتیں یا ایزائیں تم ہمیں دو گے، ہم اس پر صبر ہی کریں گے. توکل کرنے والوں کو یہی لائق ہے کہ اللہ ہی پر توکل کریں. یعنی اس صورت میں شکر، صبر اور توکل ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اللہ ہمیں بھی اس پہ عمل کی توفیق دے. کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے. نوٹ کریں، ہمیشہ اللہ کی بات کرنے پہ پذیرائی نہیں ہوتی، دعائیں نہیں ملتی، کبھی دھمکیاں بھی ملتی ہیں. یا اب تم پھر سے ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ تو ان کے پروردگار نے ان کی طرح وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہی غارت کر دیں گے. یعنی آپ کے ساتھ بحثیں کرتے ہیں، آپ کے مقابلے پہ آئیں، اب آپ بیچ میں سے نکل جائیں. یاد رکھیے جب کوئی اللہ کے نبی کو اور اللہ کے نمائندے کو اس طرح سے دھمکیاں دے تو پھر اللہ اس کا اپنا معاملہ سمجھ لیتا ہے. اور اس کے بعد ہم خود تمہیں اس زمین میں بسائیں گے، یہ ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھے. اللہ یہ ڈر ہمیں بھی عطا فرما، اور میرے سزا دینے کے بعد اسے خوف زدہ رہیں، और उन्होंने फैसला तलब किया और तमाम सरकश जिद्दी लोग नामुराद हो गए। इसके सामने दोजख है जहां पीप का पानी पिलाया जाएगा। जरा सा जहन्नम का मंजर देखिएगा। साथ ही दुआ करें, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। पीप वाला पानी, पस वाला पानी, वूंड्स का पस, जख्मों की धोवन, जिसे बमुश्किल घूंट घूंट पिएगा फिर भी वो इसे गले से उतार ना सकेगा। और इसे हर जगह से मौत आती दिखाई देगी, लेकिन वो मरने वाला नहीं। दुनिया में तो आखिर मौत आती है तो बंदे को सुकून मिल जाता ना, वहां नहीं। वमा हुआ भी मैयत, आज दुनिया में जो करना था कर लेता, वहां नहीं मरेगा। और फिर इसके पीछे भी सख्त अजाब है, यानी मौत के बाद भी चैन नहीं। इन लोगों की मिसाल जिन्होंने अपने पालने वाले से कुफर किया। आप भी नफरत कीजिए इस साल इन बातों को सुनते हुए। काफिर से नहीं, कुफर से नफरत करनी है। इनके अमाल मिसल राख के हैं जिस पर तेज हवा आंधी वाले दिन चले और उड़ा कर ले जाए। जो भी उन्होंने किया इसमें से किसी चीज पर कादिर न होंगे। यही दूर की गुमराही है, सब जाया हो गया, सारी की कराई पे पानी फिर गया। क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को बेहतरीन तदबीर के साथ पैदा किया? अगर वो चाहे तो तुम सब को फना कर दे और नई मखलूक ले आए। अंदर से बंदा बोलता है, ये कैसे हो सकता है? आजकल तो हो रहा है, देखिए तो सही। अल्लाह ताला इस वबा को फैला कर एकदम घरों में ही सबकी जान ना ले ले। अल्लाह ऐसा करता नहीं है, लेकिन कर सकता है। क्यों? वमा ज़ालिकल्लाहि बिअज़ीज़। अल्लाह पर यह काम कुछ भी मुश्किल नहीं। सबको जिंदा करना या सबको मारना अल्लाह के लिए एक बराबर है। क्यामत का एक और मंजर देखिएगा। बबर रसूलिल्लाह जमीया। और यहाँ खास तौर पे आप शैतान, जिसके ऊपर तकिया करते हुए बहुत सारे लोग गुनाह करते हैं और अपने नफ्स की शरारतों और खराबियों को भी शैतान के पलड़े में डालने की कोशिश करते हैं। आजकल तो शैतान भी बंद है, फिर ये गुनाह क्यों हो रहे हैं भाई? ये नमाजें क्यों कजा हो रही हैं? ये वक्त बे वक्त के काम क्यों हो रहे हैं? बाकी बातों को तो पीछे कीजिए। तो आज आपको उसका जवाब मिलेगा कि मैं आप सिर्फ शैतान के बहकावों में आके गलत काम नहीं करते। हमारा तो अपने नफ्स का शैतान ही बहुत माशाल्लाह एक्सपर्ट हो चुका है हमें गुनाहों की तरफ माइल करने में। तो सुनिएगा, सब के सब अल्लाह के सामने रूबरू खड़े होंगे। इस वक्त कमजोर लोग बड़ाई वालों से कहेंगे, इन लीडर्स बड़े लोगों से, कि हम तो अंदर बनकर तुम्हारे पीछे चलते थे, वी वर फॉलोअर्स, तो क्या तुम अल्लाह के अजाबों में से कुछ अजाब हमसे दूर कर सकने वाले हो? जवाब सुनिए, दुनिया में सारी उम्मीदें तोड़ दीजिए, वहां जाकर हसरत और अफसोस ना होगा। वो जवाब देंगे कि अगर अल्लाह हमें हिदायत देता तो हम भी जरूर तुम्हारी रहनुमाई करते। ये हैं भटके हुए लीडर जो अपनी जिंदगी में सजदे करवाते, कब्रें बनवाते और अपने नाम के कतबे लगवाते। कहेंगे, हमें खुद नहीं पता था तो हम तुम्हें क्या देते। लेकिन उस्ताद ही ना सही पढ़ाओ तो बेचारा दूसरों को क्या पढ़ाएगा? कोशिश तो वो बड़ी करेगा, लेकिन उसके बस से ऊपर की बात है। यही बात है, भटके हुओं के पीछे जाएंगे तो क्या देंगे? नीयत अच्छी भी होगी तो आपको कुछ दे तो नहीं सकेंगे। अब तो हम पर बेकरारी करना और सब्र करना दोनों ही बराबर है, हमारे लिए कोई छुटकारा नहीं। दुनिया में अगर सब्र कर लेते तो बच जाते। जब और काम का फैसला कर दिया जाएगा, क्या होगा? फैसले होंगे, ईमान वालों की सिफारिश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। अहले शिर्क और फासिकीन और फाजरीन देखेंगे कि मुसलमानों की सिफारिश इनके नबी ने आकर कर दी। कहेंगे, अब हम किसको पकड़े? क्योंकि ना अल्लाह को माना ना किसी रसूल को माना। कहेंगे, हाँ वो शैतान था ना हमारा, जरा उसको तो बुलाओ। पूरा वाक्या है, आप हदीस में इसको पढ़कर देखिए तो एक गंदी बदबू उठेगी उस महफिल में, और फिर शैतान आएगा और ये तकरीर करेगा जब हम सुनने लगे हैं। वकाल शैतान उलम्मा खुदी अलम्र। जब और काम का फैसला कर दिया जाएगा, शैतान कहेगा कि अल्लाह ने तो तुम्हें सच्चा वादा दिया था और मैंने तुमसे जो वादे किए थे इनके खिलाफ किया। मेरा तो तुम पर कोई दबाव तो नहीं था, यानी आप देखिए साइड ले रहा है कि मैंने मजबूर थोड़ी किया था। मेरा तो तुम पर कोई दबाव तो था ही नहीं। हाँ, मैंने तुम्हें पुकारा और तुमने मेरी मान ली, खुशी खुशी भागा, लब्बई कही, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो शायद ही किसी हुक्म पे नसीब हुई हो। ऐ शैतान, लब्बैक तो हर बात पे करने को तैयार थे। बस तुम मुझे इल्जाम ना दो, बल्कि खुद अपने आप को मलामत करो। ना मैं तुम्हारा फरियाद रस हूं, यानी तुम्हारी मदद करने वाला, और ना तुम मेरी फरियाद को पहुंचने वाले हो, क्योंकि आज वो भी पकड़ा हुआ बेचारा। बेचारा तो क्या उसको कहें, उसने तो खुद मांगा था ये सब। मैं तो सिरे से मानता ही नहीं कि तुम मुझे इससे पहले अल्लाह का शरीक मानते रहे। देखिए, साफ इनकार, कोरा चिट्टा इनकार है। यकीनन जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है। इसके बरक्स अल्लाह मैं ऐसे लोगों में करे ही ना जिनका जिक्र ऊपर गुजरा, बल्कि किन में करे? वो खिलल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाती जन्नतिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں انہیں ہمیش کی ہوگی اپنے رب کے حکم سے. اللہ ہمارے لیے بھی حکم کر دے، یعنی اپنے اعمال سے نہیں، رب کے حکم سے ہوں گے. اللہ ان کی کوششوں کو قبول کر کے کہے گا، فرشتوں جانے دو، ٹھیک ہے میں پتہ بڑی کمی ہے پر جانے دو، یہ معاملہ ہے. جہاں ان کا خیر مقدم یعنی ویلکم سلام سے ہوگا، ہائے اور بائے سے نہیں. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ باد کی مثال کس طرح بیان فرمائی؟ مثل ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں سے جو مثال شروع ہو رہی ہے وہ آپ کے میرے سامنے ایک بہت بڑی حقیقت کھولتی ہے، وہ ہے کافر اور مومن کی حالت نفس میں فرق. کافر نفس لوامہ اس کا کمزور ہوتا ہے، نتیجے میں نفس امارہ بہت طاقتور ہو جائے گا تو کفر تک پہنچائے گا اس کو. اس کے برعکس بندہ مومن کا نفس لوامہ طاقتور ہوتا ہے تو نفس امارہ کمزور ہو جاتا ہے. یعنی مومن کیا ہے، اس کا معاملہ ایک خوبصورت درخت کی طرح، شجر کی طرح. اور کیسے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے اس کو دیکھیے گا. تعلق باللہ مضبوط شریعت کی پابندی مومن کا شعار ہوتی ہے، نفس کو دبانے والا ہوتا ہے، پاکیزہ زندگی گزارتا ہے اور انسانیت کو نفع دیتا ہے. یعنی مومن ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہوتا ہے. اس کے برعکس کافر کلمہ خبیثہ کی مثل ہے، دین اور اللہ کے معاملے میں شکوک و شبہات کا شکار، شہوات میں چور، نفس کا غلام، گناہوں سے آلودہ زندگی اور انسانیت کو نفع نہیں دیتا. آپ سنیے گا اس مثال کو. مومن کیسا درخت ہے جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنے پھل لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اور ناپاک بات کی مثال گندے درخت جیسی ہے جو زمین کے کچھ اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے، اسے کچھ ثبات تو ہے ہی نہیں ہے. تو ایمان کو ثبات ہے، کفر کو نہیں ہے. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. ہاں ناانصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرے. ہم اپنے اعمال سے دیکھیں کہ ہم شجرۃ طیبہ ہیں یا شجرۃ خبیثہ. تو آپ اس آیت کی تفسیر سنیے، اس میں بہت کچھ ہے سیکھنے کا. آپ دیکھیے کہ ایمان کی مثال ہے، پودے کو پنپنے کے لیے اچھے بیج، زرخیز زمین، عمدہ کھاد، پانی اور سورج کی بھرپور روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. کبھی بھی آپ نے کہیں کو پودا اگایا ہو تو آپ اس کو سامنے لے آئیے نظروں کے. اسی طرح سے یاد رکھیے کہ زمین بندہ مومن کا دل ہے، بیج اللہ کی محبت ہے، اور پانی وحی الہی کا ہے جو اس وقت بھی آپ کے میرے دل پہ پڑ رہا ہے علم اور ہدایت کی صورت میں. جب یہ پانی پڑے گا نا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ پودے کو باہر نکلنے کے بعد مناسب ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح ایمان نیکیوں کے ماحول میں پھلتا پھولتا ہے. پیچھے آپ بیج ڈال رہے تھے، یہاں دیکھیے گا کہ اس بیج میں سے ایک چھوٹی سی کومپل نکل رہی، جیسے دھنیا، پودینہ. حقیقت ہے کہ جس کو اللہ کی محبت آ جاتی ہے اور رسول کا مقام سمجھ آ جاتا ہے، اس کی زندگی سنورتی ہے. تو سب سے پہلے دیکھیے جڑیں بنتی ہے، یہ عقیدہ ہے، تعلق باللہ، تعلق برسول، ایمان بالآخرہ. اور جو پتلی سی ڈنڈی تھی وہ بعد میں ایک سر سبز درخت کی طرح بنتی ہے. درخت کے اندر جو تنہ ہے یہ عبادات ہے، 5 پلرز آف اسلام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دعا، جہاد. اور اوپر آپ دیکھیں کہ جو شاخیں اور پتے ہیں یہ حقوق العباد ہیں، معاملات اور اخلاقیات کی صورت میں، صدقہ و خیرات. تو مومن معاشرے کو پھل دیتا ہے. بندہ مومن کا معاشرتی فلاح و بہبود میں حصہ آپ اس درخت سے دیکھ سکتے ہیں. پودا جب تناور درخت بنتا ہے تو نہ صرف یہ کہ ماحول کی خوبصورتی میں اضافے کا سبب بنتا ہے، بلکہ دھوپ میں چھاؤں دے کر ٹھنڈک بھی فراہم کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ دوسرے جانداروں کے لیے آکسیجن مہیا کرتا ہے، اور اپنے پھلوں کے ذریعے سب کی بھوک مٹاتا ہے. دعا کیجئے ہم اپنے حصے کی آکسیجن دنیا کو دے کر جائیں، جو اس قرآن اور سنت کی روشنی میں ہے. تو کیا سیکھا اس ساری چیز میں سے؟ رسولوں کی اپنی قوم کے ساتھ کشمکش، اخلاص سے کیے ہوئے اعمال کی مثال ایک اچھے درخت کی طرح، دنیا دار قائدین کی پیروی برباد کر دے گی اور شیطان اپنے پیروکاروں کو ملامت کرے گا. اب آپ کو مجھے مخاطب کیے بغیر کہا جا رہا ہے کہ اپنے لیے چوز کرو، کس بات کو، کہ شکر گزار بننا ہے یا نہ شکرے بننا ہے، اور اپنے آپ کو کس جگہ پہ کھڑا کرتے ہو. کیا تم وہ تو نہیں ہو کہ علم تر الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا آپ نے ان کی طرف نظر نہیں کی جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے نہ شکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا. اللہ ہم ایسے لوگوں میں نہ کرے. کون سا وہ ہلاکت کا گھر؟ یعنی دوزخ میں، جس میں یہ سب جائیں گے، جو بدترین ٹھکانہ ہے. انہوں نے اللہ کے ہمسر بنا لیے، لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں. آپ کہہ دیجئے کہ خیر مزے کر لو، تمہاری بازگشت تو آخر جہنم ہے، یعنی تمہیں پلٹنا تو ادھر ہی ہے. मेरे ईमानदार बंदों से कह दीजिए कि नमाजों को कायम रखें और जो कुछ हमने इन्हें दे रखा है इसमें से कुछ ना कुछ पोशीदा और जाखिर खर्च करते रहें, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें ना खरीदो फरोख्त होगी, ना दोस्ती और ना मोहब्बत। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। अल्लाह वो है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और आसमानों से बारिश बरसा कर इसके जरिए तुम्हारी रोजी के लिए फल निकाले और कश्तियों को तुम्हारे बस में कर दिया कि दरियाओं में इसके हुक्म से चलें फिरे। इसी ने नदियां और नहरें तुम्हारे इख्तियार में कर दी। इसी ने तुम्हारे लिए सूरज चांद को मुसख्खर कर दिया कि बराबर ही चल रहे हैं और रात दिन को भी तुम्हारे काम में लगा रखा है। इतने हेल्पर, इतने नौकर हैं मेरे आपके, फिर भी हम अल्लाह का काम नहीं करते। इसी ने तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी कुल चीजों में से दे रखा, सच के झूठ। वो पहले नीड्स देता है, फिर वॉन्ट्स भी देता है। पहले जरूरियातें जिंदगी पूरी करता है, फिर ख्वाहिशात जिंदगी भी पूरी करता है। अगर तुम अल्लाह के एहसान गिनना चाहो तो इन्हें पूरे गिन भी नहीं सकते। यकीनन इंसान बड़ा ही बेइंसाफ और नाशुकरा है, सच के नहीं? क्या पर मैं सिर्फ अपने किचन की चीजें गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। तब यहाँ एक शुक्रगुजार किरदार जिसके नाम पे सूरत है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, कि जिनको अल्लाह ने आपके मेरे लिए रोल मॉडल बनाया कि नफ्स के तकाजों को दबाने के बाद जो शख्सियात बनती हैं उनमें इब्राहिम भी एक शख्सियत है। वैस काल इब्राहिम और रब्बी जल हाजल बलद आमीना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये दुआ भी याद करो जब उन्होंने कहा मेरे परवरदिगार इस शहर को अमन वाला बना दे और मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से पना दे। ऐ मेरे पालने वाले माबूद, उन्होंने बहुत से लोगों को राह से भटका दिया, पस मेरी ताबेदारी करने वाला मेरा है और जो मेरी नाफरमानी करे तो तू बहुत ही माफ करने वाला रहम करने वाला है। दुआओं का दर्द महसूस कीजिए और साथ साथ आमीन कहिए। ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी कुछ औलाद इस बेखेती की वादी में तेरे हुरमत वाले घर के पास बसाई है। आज हमें भी ये करना पड़ेगा, अपनी औलादों को बंजर जगहों पे भेजना पड़ेगा ताकि वहां ईमान के बूटे लगें, लेकिन शर्त है कि हम उनकी तरबियत कर चुके हों। ऐ हमारे परवरदिगार, ये इसलिए कि वो नमाज कायम रखें, बस तू कुछ लोगों के दिलों को इनकी तरफ माइल कर दे और इन्हें फलों की रोजियां इनायत फरमा ताकि ये शुक्र गुजारी करें। ऐ हमारे परवरदिगार, तू खूब जानता है जो हम छुपाएं और जो जाहिर करें, और जमीन और आसमान की कोई चीज अल्लाह पर पोशीदा नहीं। अकीदा वाजे होना तो दुआएं बड़ी खूबसूरत, सीधी सादी और दिल में उतरती हुई दुआएं। अल्लाह का शुक्र है कि जिसने मुझे इस बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम अता फरमाए। कुछ शक नहीं कि मेरा पालने वाला रब दुआओं का सुनने वाला है। इब्राहिम को यकीन था कि दुआएं सिर्फ अल्लाह ही सुनता है। ऐ मेरे पालने वाले, मुझे नमाज का पाबंद रख और मेरी औलाद में से भी। अल्लाह हमारे हक में भी ये दुआएं कबूल फरमा। ऐ मेरे रब, मेरी दुआ कबूल फरमा। ऐ हमारे परवरदिगार, मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को भी बख्श और दीगर मोमिनों को भी जिस दिन हिसाब होने लगे। कैसे तड़प के एक इंसान दुआ करता है। तो क्या है आयत 28 से 41 में ना शुक्री करने वालों का अंजाम? रोजे क्यामत कोई लेन देन या सिफारिश काम नहीं आएगी। अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं किया जा सकता। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजिज़ाना मनाजात अब सूरत भी खात्मे पे और पारा भी खात्मे पे। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये लोग हमें अपने आप से दूर क्यों सोचते हैं, ना इंसाफों के अमाल से अल्लाह को गाफिल ना समझो, वो तो इन्हें इस दिन तक मोहलत दिए हुए है जिस दिन आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं ना खौफ की वजह से, उसी का जिक्र है। वो अपने सर ऊपर उठाए दौड़ भाग रहे होंगे सटपटाए ऊंटों की तरह, खुद अपनी तरफ भी इनकी निगाहें न लौटेंगी, यानी अपना भी नहीं होश होगा, और इनके दिल खाली और उड़े हुए होंगे। लोगों को इस दिन से होशियार कर दीजिए। कौन सा दिन? जबकि इनके पास अजाब आ जाए और जालिम कहेंगे कि ऐ हमारे रब, हमें थोड़े बहुत वक्त तक की मोहलत ही दे दे कि हम तेरी तबलीग मान लें और तेरे पैगम्बरों की ताबेदारी में लग जाएं। क्या तुम इससे पहले भी कसमें नहीं खा रहे थे कि तुम्हारे लिए दुनिया से पलटना ही नहीं? तुम तो कहते थे जाना ही नहीं, अब क्या हो गया? और क्या तुम इन लोगों के घरों में रहते सहते ना थे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया? और क्या तुम पर वो मामला खुला नहीं कि हमने इनके साथ क्या कुछ किया? हमने तो तुम्हें समझाने के लिए बहुत सी मिसालें बयान कर दी थी। ये अपनी अपनी चालें चल रहे हैं, अल्लाह को इनकी चालों का इल्म है, और इनकी चालें ऐसी न थी कि इनसे पहाड़ अपनी जगह से टल जाएं। क्या खूबसूरत आयतें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुकम्मल वुजू करना निस्फ ईमान है, अल्हम्दुलिल्लाह मीजान को सवाब से भर देता है, और सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर आसमान और जमीन को सवाब से भर देते हैं। नमाज नूर है, जक़ात बुरहान है, सब्र रोशनी है, قرآن دلیل و حجت ہے، ہر شخص صبح کرتا ہے تو اپنے نفس کو بیچنے والا ہوتا ہے، پھر یا تو اسے جہنم سے آزاد کرا لیتا ہے یا ہلاک کر دیتا ہے. اللہ ہمیں جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرانے والوں میں شامل کرے. آپ ہرگز خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا، اللہ بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا ہے. جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی، سفید چپاتی کی طرح ہوگی، اور آسمان بھی اور سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے رو برو ہوں گے. سوچیے اس وقت دلوں کی کیا کیفیت ہوگی. آپ اس دن گناہگاروں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے لباس گندک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر چڑھی ہوئی ہوگی. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے. بے شک اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. اور کیوں یہ انجام ہوا؟ اس کی وجہ اب آگے بتائی جا رہی ہے کہ یہ پیغام ان تک نہیں پہنچا. ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن پاک تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دیے جائیں اور بخوبی معلوم کر لیں کہ اللہ ایک ہی معبود ہے، تاکہ عقل مند لوگ سوچ سمجھ لیں. آج ہم مسلمان نہ پہنچا کر یہ قرآن انسانوں کو جہنم کا ایندھن بنانے میں ان کے مددگار ہیں. اللہ ہمارے اس جرم کو معاف بھی کرے اور ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے. تو کیا دیکھا 42 سے 52 میں روز قیامت نافرمانوں کا کیا حال ہوگا؟ اور اللہ کے تمام رسول استقامت کا پہاڑ تھے. روز قیامت آسمان و زمین بدل دیے جائیں گے، ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا. اللہ کا پیغام سب انسانیت کے لیے ایک ہی ہے، اور وہ ہے توحید، لا الہ الا اللہ. اور روز قیامت مجرموں کا حال دردناک سزا کی صورت میں ہوگا. تو سورت ابراہیم پوری ہوئی. ذرا سا اس سورت کی روشنی میں فتنہ نفس دیکھ لیجئے گا. پارے کا ٹاپک، پہلی آیت، نفس امارہ کا ہدف جاہلیت، قرآن کا سفر روشنیوں کا سفر. تو اس وقت بھی من مار کے قرآن کو سن رہے ہیں تاکہ نفس امارہ کو دبا سکیں. آیت 22، روز قیامت شیطان کی تقریر ان لوگوں کے لیے جو ساری زندگی نفس لوامہ کو دباتے رہے. آیت 24، مومن شجرتن تیجیبہ ہے جو نفس کو دبانے والا ہوتا ہے. اور 26، انکار کرنے والا شجرتن خبیصہ کی طرح نفس کا غلام ہوتا ہے. اور آیت 51، نفس کی بات ماننے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ بچائے. ایک آیت ہے صرف سورہ ہجر کی، اس کو پڑھ لیجئے. ایک قوم کے نام پہ سورت ہجر، 99 آیات ہیں، 15 نمبر کی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی. بعض لوگ کہتے ہیں ایک آیت ادھر کیوں آئی، اگلے پارے میں ہوتی. اس لیے آئی کہ آپ کو مجھے شروع میں بھی جو بات ملی وہ آخر میں مل جائے، کہ اس قرآن کو پڑھ کے ہی نفس کے فتنوں پہ قابو پائیں گے. تو لے لیجئے جیمز آف دی پارا، سنہرے حروف. اللہ کا ذکر دلوں کا اطمینان ہے. قرآن روشنی کا سفر ہے، بلکہ روشنیوں کا سفر ہے. زندگی روشن ہو جاتی ہے اس قرآن کے ساتھ. کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیصہ کا فرق دیکھا. انسانیت کے لیے نفع مند بننے کی نیتیں کی ہیں. اولو الالباب نفس کے مقابلے میں وحی اور عقل کی بات مانتے ہیں. اور فتنہ نفس کیا ہے؟ اس کے حساب سے نفس کی تین حالتیں دیکھیں اور تقوی، احسان اور صبر کا معاملہ دیکھا. فتنہ بہت بڑا ہے تو اس کا حل بھی تو کچھ ہوگا. تو آئیے ذرا نفس کی شرارتوں سے بچنے کا حل، سلیوشن لیتے ہیں. پہلی بات ہے کہ فتنہ نفس کو پہچاننا. دیکھیے دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے پارے کا. جیسے ایک ڈاکٹر سے ساری باتیں کر سن کے دوا لیے بغیر اٹھ جائیں، چند منٹ کے لیے اپنے آپ پہ قابو پا لیں ہم. فتنہ نفس کو پہچاننا اور نفس کی شرارتوں اور حالتوں کے بارے میں علم حاصل کرنا. یاد رکھنا ہے کہ اسلام نے ہمیں نفس کشی نہیں اور رہبانیت نہیں، بلکہ نفس پہ قابو پانے کی ہدایت دی ہے. نفس امارہ کے تقاضوں کو دبا کر محسن، متقی اور صابر بننا ہے. اپنے نفس کو شیطان کے حوالے کر کے شہوات اور شبہات میں نہیں پڑنا. یہ دو راستے ہیں شیطان کے ہمارے جسم میں آنے کے، یا خواہشات میں ڈالتا ہے یا شبہات میں، یعنی ڈاؤٹس اور ڈیزائرز. نفس اور شیطان کے مقابلے میں وحی الہی اور عقل سے کام لے کے اولو الالباب بننا. دنیا میں صبر اور تقوی سے کام لیتے ہوئے آخرت کے بارے میں سنجیدہ ہونا. نفس کی ٹھنڈک کا سارا سامان جنت میں ہے، اس لیے دنیا کو جنت بنانے کی بیکار کوشش نہیں کرنی. اور نفس امارہ کی پیدا کردہ جہالت اور ظلم کو روکنے کے لیے قرآن سے تعلق مضبوط کرنا ہے. انبیاء، صحابہ کرام اور تابعین کو اپنا رول ماڈل بنانا ہے. نفس لوامہ کو مضبوط کرنے کے لیے مجاہدہ، یقین، عزم اور محاسبہ کرنا ہے. نفس مطمئنہ کو پانے کے لیے دل، اعضاء اور زبان سے عمل کرنے ہیں. پچھلی زندگی پر استغفار اور آئندہ زندگی میں استقامت، ہدایت اور نفس کے فتنے سے بچنے کے لیے دعائیں کرنی ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ ہماری کامیابی کا دار و مدار نفس امارہ کو دبانے میں ہے، نفس لوامہ کو طاقتور کر کے نفس مطمئنہ کا سفر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.